ओम शांति। राजनीतिज्ञों के सम्मेलन के आज के इस उद्घाटन और खुला सत्र एक में आप सब आए हुए सम्माननीय अतिथियों का, जन प्रतिनिधियों का एवं विशिष्ट महानुभावों का ब्रह्मा कुमारीज के इस ज्ञान सरोवर प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीति में आध्यात्मिकता विषय पर ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मैं नम्र निवेदन करूंगी कि आज के इस उद्घाटन सत्र के हमारे सम्माननीय अतिथियों का कि वह मंच पर पधार कर मंच की शोभा बढ़ाएं। आज के इस सत्र के हमारे अध्यक्ष राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी, जो महासचिव हैं ब्रह्मा कुमारीज के, आप मंच पर पहुंच चुके हैं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थी श्री प्रमोद सांवत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। आप भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, आपका भी हम करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। सम्मेलन का उद्देश्य देने के लिए राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी, जो निर्देशिका है ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की, आप भी हम सबके बीच पहुंच चुकी हैं। दीदी, आपका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शुभ प्रेरणाएं देने के लिए राजयोगी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी, जो मैसूर से आई हैं और हमारे राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग की आप चेयरपर्सन भी हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगी श्रीमती दंसारी अनसुईया जी का, जो कि पंचायती राज एवं ग्राम विकास मंत्री हैं, तेलंगाना से आई हैं। आपका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी, जो कि वाइस चेयरपर्सन है राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग की, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री विक्रम कुमार जी, पूर्व मंत्री बिहार से आप आए हैं, आपको भी मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री लक्ष्मण राव डोबले जी, जो पूर्व मंत्री हैं महाराष्ट्र से आप आए हैं, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राजनीति सेवा प्रभाग की, आपका भी हम दिल से स्वागत अभिनंदन। राजयोगी ब्रह्मा कुमार रंगनाथ भाई मैसूर से आए हैं, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग के, आपका भी हम बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मंच सज चुका है, लेकिन ये सत्र शुरू करने से पहले हम 2 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे और इस सत्र का आरंभ करेंगे।
शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। दुख अशांति का अंधेरा जा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय, देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय, शांति की किरणें है वो बिखरा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा।
आज का ये विशेष अवसर केवल एक सम्मेलन का शुभारंभ नहीं, बल्कि एक ऐसे शुभ संकल्प की शुरुआत है जहां राजनीति और आध्यात्मिकता मिलकर शांतिपूर्ण समाज का निर्माण के लिए उसके लिए चिंतन करेगी, चर्चा करेंगे। क्योंकि जब राजनीति और आध्यात्मिकता आपस में मिल जाती है तभी हम एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं और भारत को जो पहले भी सोने की चिड़िया कहलाता था उसी भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। यही ब्रह्मा कुमारी का संकल्प है और इसी संकल्प से पिछले 90 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था न केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में सेवाएं कर रही हैं। तो आज का ये सत्र उद्घाटन सत्र है और मैं निवेदन करूंगी कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि मंच आसीन हमारे सम्माननीय अतिथियों का तिलक, बैज और अंग वस्त्र के द्वारा सम्मान स्वागत करने के लिए मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि वे आए और आकर के हमारे सम्मानित अतिथियों का सम्मान अभिवादन करें। तिलक हमें आत्मिक स्मृति का प्रतीक है, हमें ये स्मृति दिलाता है कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। सभी तालियां बजा सकते हैं। पटका एक सम्मान का हमें अनुभव कराता है तो इसीलिए पटका पहनाकर बहने हमारी सम्मानित अतिथियों का सम्मान कर रही हैं और बैज हमें एक श्रेष्ठ संकल्प से जुड़ने की निशानी है कि हम सबका एक ही संकल्प है कि भारत फिर से महान बने, हम भारत को फिर से उसी ऊंचाई पर लेकर जाएं और इसके लिए ही ये सम्मेलन रखा गया है। तो हम अपने सभी सम्माननीय अतिथियों का भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक गरिमा के साथ स्वागत कर रहे हैं। गुलाब के पौधे के द्वारा हमारे सम्माननीय गोवा के चीफ मिनिस्टर जी का स्वागत किया है। गुलाब रूहानी खुशबू फैलाता है और हमें उम्मीद है कि हम सब भी यही यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएंगे कि हमें गुलाब की तरह सब जगह रूहानी खुशबू फैलानी है। अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे मधुर वाणी ग्रुप को कि वह आए और अपनी भावनाएं एक बहुत ही सुंदर गीत के द्वारा, उनकी क्या भावनाएं हैं राजनीतिज्ञों के लिए वो अपनी भावनाएं इस गीत के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मधुर वाणी ग्रुप, जिसमें हमारे बहुत ही पुराने भाई सतीश भाई जी, नितिन भाई जी और उनके साथी सब सम्मिलित हैं। तो बहुत सुंदर गीत हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है मधुर वाणी ग्रुप से।
ओम शांति। एक बार सभी सास्वर कहें ओम शांति। ज्ञान के मान सरोवर में आप प्रिय राजहंस आए हैं, राजयोग के मोती चुगने सादर कदम बढ़ाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, शुभागमन में हम सब हर्षाए हैं। प्रभु नंदन का अभिनंदन हो, स्वागत सुमन लुटाए हम, स्वागत सुमन लुटाते हैं।
लाए हम शांतिपूर्ण समाज के लिए, कदम से कदम मिलाए हम, कदम से कदम मिलाए हम। माननीय मुख्यमंत्री आए, शुभागमन हर्षाए हम। प्रभु नंदन का है अभिनंदन, स्वागत सुमन लुटाए हम, स्वागत सुमन लुटाए हम। घरे सगा मगरे माँ पगरे कसारे सारे। राजनीति में सुनीति हो, सब में हो सद्भावना, सुख शांति आनंद मिले, मन की मंगल कामना। आध्यात्मिकता से स्वर्णिम, आध्यात्मिकता से स्वर्णिम भारत का दृश्य दिखाए हम। प्रभु नंदन का है अभिनंदन, स्वागत सुमन लुटाए हम, स्वागत सुमन लुटाए हम। राजनीति में आध्यात्मिकता और नैतिकता लाए हम, शांतिपूर्ण समाज के लिए कदम से कदम मिलाए हम, कदम से कदम मिलाए हम।
आपकी तालियां हम सबका उत्साह वर्धन करती हैं।
मूल्यों की माला गले में, सर पर दोहरा ताज हो, राजयोग के द्वारा जब यह सारा काम काज हो। राम राज होगा जब तन मन, राम राज होगा जब तन मन सब अर्पण कर जाए हम। प्रभु नंदन का है अभिनंदन, स्वागत सुमन लुटाए हम, स्वागत सुमन लुटाए हम। राजनीति में आध्यात्मिकता और नैतिकता लाए हम, शांतिपूर्ण समाज के लिए कदम से कदम मिलाए हम, कदम से कदम मिलाए हम।
राजनीति को दूरदर्शी बहनों सा नेतृत्व मिले, आज करे हर दिल पे राज कल ताज तख्त और तिलक मिले, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, ज्ञान सरोवर बना मनोहर, आपके संग मुस्काए हम। प्रभु नंदन का है अभिनंदन, स्वागत सुमन लुटाए हम, स्वागत सुमन लुटाए हम। राजनीति में आध्यात्मिकता और नैतिकता लाए हम, शांतिपूर्ण समाज के लिए कदम से कदम मिलाए हम, कदम से कदम मिलाए हम, शुभागमन हर्षाए हम, स्वागत सुमन लुटाए हम, शुभागमन हर्षाए हम, स्वागत सुमन लुटाए हम, शुभागमन हर्षाए हम, स्वागत सुमन लुटाए हम।
सतीश भाई, नितिन भाई थोड़ा आएंगे, बहुत सुंदर गीत हमारे सामने प्रस्तुत करके हम सबके अंदर उमंग उत्साह भरने के लिए मैं मधुरवाणी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज राजनीतिज्ञों का सम्मेलन है और मेरे सामने हमारे चेयरपर्सन, मैं कहूंगी भूतपूर्व चेयरपर्सन, जिन्होंने सालों साल ये सम्मेलन आयोजन करने में दधीचि ऋषि की तरह आदि समय से शुरुआत से अपनी हदियां लगाई, हमारे बहुत ही आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई जी, जो आज अव्यक्त रूप में तो मैं कहूंगी हमारे बीच में हैं, लेकिन आज पहली बार ये दिवस है, पहली बार ये कॉन्फ्रेंस है जो हम उनके बिना कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी ये सम्मेलन करे उसमें भाई साहब के ही निर्देश के अनुसार हमने ये सब सम्मेलन आयोजित किए थे, तो हम एक मिनट के लिए उनके प्रति, जो अभी ही 9 अक्टूबर को पिछले साल आपने देह का त्याग कर अव्यक्त हुए, तो हम एक मिनट के लिए अपने श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। श्री लक्ष्मण राव ढोबले जी से भी निवेदन है कि वो मंच पर आए, और बहनों से निवेदन है कि उनका सम्मान करें। और सत्र को आगे बढ़ाते हुए इस सम्मेलन की क्यों आवश्यकता है, कैसे राजनीति और आध्यात्मिकता मिलकर एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कैसे करेगी, जो आज का हमारा विषय है, शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीति में आध्यात्मिकता, इस विषय को क्लियर करने के लिए, अपने विचार को हमारे साथ साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ राजयोगी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, जो कि निर्देशिका हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की। आप ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर भी हैं। ब्रह्मा कुमारीज के जो दो विंग्स हैं उनमें एक एडमिनिस्ट्रेटर्स का विंग है, उसकी आप चेयरपर्सन हैं। आईटी विंग की भी आप चेयरपर्सन हैं। दिल्ली जोन की भी आप सेवाएं करती हैं और जो दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भी आप विशेष भूमिका निभाती हैं। आपके ही निर्देशानुसार प्रोग्राम होते हैं। बाल्यकाल से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और आप 1971 में आप लेक्चरर थी सेंट कामल कॉलेज में बैंगलोर में, तो वहां से रिटायरमेंट लेकर आपने ब्रह्मा कुमारीज को अपना पूरा जीवन दिया। हम सबके लिए बहुत रोल मॉडल हैं। मैं समझती हूँ 24 घंटे आप एक्टिव रहती हैं, बहुत ट्रेवल करती हैं देश विदेश और कभी थकती नहीं हैं। बहुत ही सरल और निर्माणचित होकर सब कार्य करती हैं। तो मैं निवेदन करूंगी दीदी से कि आए और अपने विचार आज के इस विषय पर हम सबके साथ साझा करें। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज के सम्मेलन का उद्घाटन सत्र हमारे भारत देश के बहुत सुंदर प्रांत के गोवा के चीफ मिनिस्टर से सुशोभित है। आपका हम बहुत बहुत प्यार से दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, दिल की दुआएं आपको दे रहे हैं। आपने पधार कर इस सम्मेलन की गरिमा को बढ़ाया है। अति बलिष्ठ मंच, सर्व राजनेताएं जहां पर मंच पर उपस्थित हों तो आप समझ सकते हैं वो कितना शक्तिशाली मंच होगा। एक एक का नाम लेने के बजाय मैं आप सबका और सभा में उपस्थित सर्व राजनेताओं का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन कर रही हूं। स्पिरिचुअलिटी इन पॉलिटिक्स फॉर अ पीसफुल सोसाइटी, मुझे लगता है कि अपने देश के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। अपने देश में आदि से ये सदा बना रहा है। कैसे, थोड़ी नजर दौड़ाते हैं। एक समय वो था, हमारी मान्यता है, एक समय वो था जो सारा ही विश्व भारत कहलाता था और उस देश में, उस विश्व में राज्य करने वाले कौन थे? देवताएं राज्य करते थे। भारत को देव भूमि कहा जाता है, देवताओं का साम्राज्य था। और देवताओं की निशानी क्या थी? उनके पास डबल क्राउन था, एक राज्य अधिकार का और दूसरा था प्रभा मंडल, जो कि पवित्रता का, आध्यात्मिकता का, नैतिकता का प्रतीक था। जिस समय के लिए हम गायन करते हैं, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है, वो देश था। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। और आज जब मैं आप सबको अपने सम्मुख देख रही हूं, मैं आपके भाग्य पर भी बहुत गर्व कर रही हूं। क्यों? आप सबको समाज की सेवा करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है और रिकग्निशन भी है। कई लोग सेवा करते हैं लेकिन रिकग्निशन नहीं, लेकिन आप सबको वो रिकग्निशन भी उपलब्ध है तो उसके आप कितने भाग्यशाली हैं। सेवाधारी जिसकी तीन प्रमुख निशानियां हैं, एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण, निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्टिव, और तीसरा जिसको हम कहते हैं निर्मल वाणी, आपके मुख से निर्मलता, स्वच्छता, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, एक प्रमुख गुण जो कि आध्यात्मिकता हमें सिखलाती है वो है कम्युनिकेशन हमारा कितना शक्तिशाली होना चाहिए, कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। भारत देश अपने, मैं इस विषय को लूंगी थोड़ी देर में, भारत देश अपने आप में जो आध्यात्मिकता का भंडार रख के बैठा है, ये एक कारण है जो आज भारत पर अनेकों आक्रमण हुए लेकिन फिर भी भारत जीता नहीं जा सका, फिर से वो खड़ा हुआ है और विश्व गुरु बनने जा रहा है। वो क्या चीज है? डॉक्टर अब्दुल कलाम जब यहां पर आए थे, उन्होंने हमारे यूथ को कहा, मैं यूथ से बात करना चाहता हूं, और यूथ को पूछा क्या चीज है जो भारत पर सबने आक्रमण किया, भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्या कारण है इतना सहन करता रहा, इतना पेशेंट रहा, क्या कारण है? और उत्तर निकला, वो है भारत की स्पिरिचुअलिटी। आपको ख्याल होगा जब अलेक्जेंडर भारत से जा रहे थे तो लोगों ने कहा, आप जा रहे हो भारत से, कोई सौगात तो ले जाओ। वो क्या सौगात ले जाएं? सौगात में यहां के एक संत को ले जाइए, ये संत ही यहां की पावर है और संत आपको मदद करेंगे। अलेक्जेंडर का कहना माना गया और जंगल में एक संत को ढूंढा गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई, चलिए आपको अलेक्जेंडर सिकंदर महाराज बुला रहे हैं अपने देश ले जाने के लिए। संत बोले, मुझे नहीं जाना, मैं बड़ा संतुष्ट हूं। अरे महात्मन, आप कहां जंगल में बैठे हो, कहां इतने साधारण रूप में हो, भोजन भी उपलब्ध नहीं, क्या मैं नहीं जाता। मंत्री वापस लौटते हैं, सिकंदर आजम को जाकर के बताते हैं, और सिकंदर कभी ना लेने को तो तैयार नहीं होते थे, कहते मैं चलता हूं। वे चले, आप हमारे साथ हमारे देश चलिए। बोले मैं नहीं जा सकता, आपको चलना होगा, मैंने कह दिया मैं नहीं जा सकता। सिकंदर ने थोड़ी आवाज तेज की, आप मेरा कहना नहीं मानेंगे? कहा मैं गुलामों के साथ नहीं जाता। संत बोले, मैं गुलामों के साथ नहीं जाता। सिकंदर को और गुस्सा आया, तलवार निकाली और बोला, ये देखा है? कहा इस समय? सिकंदर ने कहा, आप मेरे को गुलाम कह रहे हैं? गुलाम नहीं, आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हैं। सिकंदर ने कहा, तलवार देखिए, मैं इससे आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। संत बोले, आप मेरे टुकड़े कर ही नहीं सकते, मैं तो आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी, जो कदापि नाश नहीं होता। ये है भारत की आध्यात्मिकता। और क्या ही, जब मैं स्पीकर डेस्क पर आ रही थी तो एक विचार आया कि राजनेताओं को राजयोग की ही शिक्षा मिल रही है। हम सब राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, हम गुलाम बनने के लिए नहीं, दास योग नहीं, परंतु राजाओं के राजा बनने के लिए हम यहां आध्यात्मिकता की शिक्षा लेते हैं। राजाओं के राजा किसे कहा जाता है? प्यारे भाई बहनों, छोटी स्टेट के राजा बनना क्या बड़ी बात है, लेकिन वह शिक्षा जिससे आप दिलों पर राज्य कर सकें, आप हृदय सम्राट बन सकें, लोगों के दिलों को जीत सकें, वो केवल 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 एक ही साधन है और वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता विषय बहुत विस्तार का है, लेकिन मैं केवल 5 चीजें उसकी लेकर के समाप्त करूंगी। पहली चीज जो हम सबको चाहिए वो है विश्वास। विश्वास, स्वयं में विश्वास, और ये भी याद रखिएगा आपके लोगों का भी आप में विश्वास चाहिए। यदि मैं यूं कहूं, टुडे ट्रस्ट इज इन शॉर्ट सप्लाई, हम एक दूसरे को विश्वास की निगाह से नहीं, हम एक दूसरे को संदेह अनुमान की निगाहों से देखते हैं। जिसकी जीवन की शैली झूलती मीनार की तरह होगी वो एक बलिष्ठ राज्य की स्थापना कैसे कर सकेगा। इसलिए ट्रस्ट का जीतना आवश्यक है। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस, जिसके लिए किसी ने कहा इट इज बीइंग स्टेडिली इरोडेड। कॉन्फिडेंस यदि नहीं है तो खुदा भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सब कुछ खो दें परंतु अपना कॉन्फिडेंस कदापि ना खोएं। भगवान हम आत्माओं से कहते हैं तुम एक कदम आगे बढ़ाओ मैं 1000 बढ़ाऊंगा, अपने कॉन्फिडेंस को मत खोना, तुम मुझे उंगली दोगे ही नहीं तो मैं पकड़ूंगा किसे, किसे मदद करूंगा। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस ये अनिवार्य है। एक चीज जो कि अति आवश्यक वर्तमान समय जो विज्ञान का युग है, तकनीकी का युग है, एआई का युग है, वो समय था जब कोई भी राज्य नीति में आ जाता था, राजनीति में प्रवेश कर लेता था। आज समाज जागृत समाज है और आज जो आवश्यकता है वो है कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग। आपकी कॉम्पिटेंस अगर नहीं है तो आप आगे सेवा कर कैसे सकेंगे, पिछड़ जाएंगे। इसलिए जहां तक प्यारे भाई बहनों आप समाज की सेवा करते हैं, मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करूंगी, अपने आप को कदापि मत भूलिए। स्व और सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना है। न केवल अपने कॉम्पिटेंस परंतु आपके जो साथी हैं उनके कॉम्पिटेंस को भी बढ़ाएं। दूसरी बात है कैरेक्टर। इंसान अपने चरित्र से पहचाना जाता है। वो चरित्र क्या है? आज हमने चरित्र की परिभाषा को भी बहुत संकुचित कर दिया है। सच्चाई की बात यह है, क्या हमारी कथनी और करनी दोनों में समानता है? हम कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, इन व्हाट सेंस? कथनी करनी समान हो, इंटेग्रिटी हो, फेयरनेस हो और साथ साथ अपने से पूछिए क्या हम कमिटमेंट रखते हैं। जो कमिटमेंट मैंने दी क्या मैं उसको ऑनर करती हूं, जो निर्णय मैं लेती हूं, जो निर्णय पर बुद्धि लगाती हूं क्या वो स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। डिसीशन मेकिंग मेरी अप्रोप्रिएट, जस्ट एंड विदाउट डिले और साथ साथ सर्व आत्माओं की हितकारी है या अपनी ही हितकारी है। क्या निर्णय लेती हूं, कैसे लेती हूं, सेवा भाव सामने है। इसी रीति से यदि मैं अपनी बातों में शिफ्ट करती हूं, बार बार अभी ये नहीं अभी ये नहीं, और उन चीजों को ऐसे छोड़ देती हूं, लोगों का विश्वास टूट जाता है। आध्यात्मिकता वो हमें बल देती है, राजयोग का अभ्यास हमको वो बल देता है जिससे हमारे जीवन में दृढ़ता स्थिरता आती है। और जो व्यक्ति दृढ़ होता है स्थिर होता है सफलता उसके कदम चूमती है। इसी रीति से कम्युनिकेशन जिसको मैंने कहा, मैं नेता हूं, एक मुझे पोजीशन है, लेकिन क्या मैं और दूसरों को भी वैसा ही समझती हूं, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूं या शक्ल देख करके जवाब देती हूं। दूसरे को अंडरस्टैंड करना, प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, उनके सपोर्टिंग बनना, ना कि स्वयं को एक हार्श व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करना। आई शुड बी जस्ट एज वेल एज काइंड। परमात्मा लॉफुल भी है तो लवफुल भी है, दोनों है। और राजनीति और आध्यात्मिकता इस ही पहिए पर चलते हैं। ये नहीं कि आप किसी को क्षमा कर दें बिना बात के, नहीं, लॉ लॉ है, प्रेम प्रेम है, लेकिन क्या लॉ को हम लव फुली भी दे सकते हैं। अगर आप लव फुली, मेरा अनुभव है, अगर किसी को सीधा आप कोई बात कहते हैं लॉ की, वो थोड़ा घबराता है, दूर होता है, लेकिन प्रेम से उस चीज को जब समझाया जाता है व्यक्ति स्वीकार करते हैं। आप सबके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जबकि आपको द्वंद्व आ जाता है, उस वक्त अपनी इस आध्यात्मिक शक्ति को, प्रेम की शक्ति को उजागर करें। व्यक्ति प्रेम से सब कुछ समझ सकता है। इसी रीति से जिसको हम कहते हैं टू बी अ ह्यूमन बीइंग, चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति क्या भी कर रहा हो, हमारे यहां दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, ह्यूमन डूइंग एंड ह्यूमन बीइंग। आजकल हमारा नजरिया ह्यूमन डूइंग की तरह रहता है कि आप क्या करते हैं, आपके डेजिग्नेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका समाज में योगदान क्या है, ह्यूमन डूइंग। लेकिन क्या कभी व्यक्ति को ह्यूमन बीइंग की तरह से भी देखते हैं। एक इंसान स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि हम सब बेसिकली आत्माएं हैं और आत्मा के नाते से हम आपस में भाई भाई हैं। जब ये नजरिया हमारा बनता है भाई भाई का, तो जो पीसफुल समाज की हम रचना चाहते हैं वो तब संभव हो सकती है। वासुदेव कुटुंबकम तब हो सकता है, सारी वसुधा सारा इंसानियत का, इंसान का जो कुनबा है वो नजर आएगा, इंसानियत बहेगी और हमारा समाज पीसफुल समाज के रूप से उभर करके आएगा। सच्चाई की बात यह है, जो विश्वास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हम सस्टेनेबिलिटी पर काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को देखते हैं, इसी रीति प्यारे भाई बहनों आप समाज सेवक, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा है, क्या मैं कंसिस्टेंट हूं, क्या मेरी जो रेपुटेशन है उस पर मुझे खुद को विश्वास, औरों को विश्वास है, एम आई मेंटेनिंग इट, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इन चीजों को जो आपके स्पेशली, मैंने केवल उन्हीं वैल्यूज को लिया जो आपके क्षेत्र में उपयोगी है, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, सेवा भाव, ये सब चीजें हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। किसी ने बहुत सुंदर, ये सच है, हम सारे विश्व को अकेले नहीं बदल सकते। इट इज सेड, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। मैं दूसरों को ठीक करने जाऊं उससे पहले मैं स्वयं पर ध्यान दूं, स्वयं पर अटेंशन दूं। मैं स्वयं का सुधार कर सकती हूं, दूसरों को सुधारने की मेरे पास ना तो शक्ति है ना मुझे अधिकार है। आप जब स्वयं को बदलेंगे तो जग बदलेगा, आप बदलेंगे आप आदर्श स्थापित करेंगे, आप बदलेंगे आप एक उदाहरण स्थापित करेंगे। और ये भी विश्वास हम अपने बीच रखें कि यदि पहले स्वर्गमयी सृष्टि रही है जहां देवताएं राज्य करते रहे हैं, जहां पवित्रता सुख शांति का साम्राज्य था, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कभी नहीं व्यापा, दुख कभी नहीं था, प्यारे भाई बहनों विश्वास के साथ और परमात्मा पिता जिस सृष्टि की रचना कर रहे हैं, हमें संपूर्ण निश्चय है वो दिन दूर नहीं जब इसकी पुनर्स्थापना होगी और हमारे द्वारा ही होगी, हम ही बदलेंगे, हमें ही करना है। इन चीजों को उजागर करने हेतु ये सम्मेलन रचा गया और मुझे ये विश्वास कि हर सेशन से आप कोई न कोई अच्छी बात अपने जीवन में धारण करने के लिए अवश्य अपनाएंगे और लेकर के जाएंगे। छोटी सी एक कहानी से मैं समाप्त करती हूं। एक बार जंगल में आग लगी, सब पशु पंछी जंगल छोड़ करके जाते रहे, एक चिड़िया तालाब से चोंच भर पानी ले लेती और जहां आग थी वहां जाके डाल आती। एक कौवा बैठा था, कौवे ने कहा, अरे मूर्ख चिड़िया, इतनी बड़ी जंगल की आग तेरे चोंच भर पानी से बुझ जाएगी, क्यों अपने आप को सता रही है। चिड़िया क्या बोली, भाई मैं ये नहीं जानती जंगल की आग बुझेगी या नहीं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग लगती हुई देखने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और आप सबको हमने उसी दृष्टि से बुलाया है। आप सब भी यहां से वो पंछी, छोटा सा भी एफर्ट करेंगे संगठित रूप से, वो अपना रूप अवश्य दिखाएगा। और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हम अपनाएंगे। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
थैंक यू दीदी फॉर शेयरिंग इनसाइटफुल थॉट्स एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज विद अस। और आप सब ने भी मॉर्निंग में मेडिटेशन सेशन में ये तो सीख ही लिया होगा, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन डूइंग, दैट आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। सभी ने सीखा था मॉर्निंग में? यस, थैंक यू। जब लीडरशिप में स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाती है तो गवर्नेंस केवल एक व्यवस्था नहीं रह जाती है, वह जन कल्याण का एक माध्यम बन जाती है। अभी मैं जिनको आमंत्रित करने जा रही हूं उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है। उनकी पॉलिटिकल जर्नी साधारण नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं बात कर रही हूं जिनको प्यार से सीता अक्खा कहते हैं। आप 14 वर्ष की उम्र में, आप कोया आदिवासी फैमिली से हैं, एक ट्राइबल 14 साल की बच्ची जो नेक्सलाइट बन गई, और नेक्सलाइट बनने के बाद आज कैबिनेट मिनिस्टर हमारे सामने है। मैं समझती हूं एक जबरदस्त हमको उनका तालियों के द्वारा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है। और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई पढ़ी जेल में, जेल में 10वीं पास की पढ़ाई पढ़ी, आपने लॉ किया, आपने पीएचडी करी, 3 टाइम मुलुगु में एमएलए रह चुकी हैं, वर्तमान में आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं फॉर पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल वाटर सप्लाई एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। कोविड में भी आपने खुद 400 ट्राइबल एरियाज में जाकर जो नेसेसरी डिलीवरी जो भी चाहिए था आपने खुद जाकर के वो किया। तो मैं ऐसे सेवा समर्पण और ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के से अनेक जीवनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित आपने किया है। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने शुभ विचार शुभकामनाएं हम सबके साथ साझा करें। सीता अक्खा जी।
ओम शांति। नमस्कारम। फर्स्टली आई वांट टू थैंक द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ ब्रह्म कुमारीज फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस स्पिरिचुअल गैदरिंग एंड माय वार्म ग्रीटिंग्स टू द ऑनरेबल सीएम गोवा एंड ऑल द डिग्नेटरीज प्रेजेंट हियर। This is my first visiting to Mount Abu. I was told Mount Abu is a peaceful place and today I am experiencing it. Thank you the Telangana Brahma Kumaris Shanti Sarovar once again. I belong to an Adivasi community and I have seen many atrocities towards our community in my childhood, which led me to take the path of revolutionary against the system. I thought that the gun was the only solution to solve our problems. Later, I realized that weapon and violence are not the solution. But education is the most powerful to change the world. Then I restarted my education. I completed my LLB MA, LLM, PhD in political science from Usmania University, Hyderabad, and I was practiced as an advocate also. And I am awaiting my admission for my second LLM now. I want to always be a student to learn new things, gain knowledge, and serve my people. This is my journey from gun to pen. Politics is not only administration and power. Politics is about serving people. A good leader must be a good human being first. We need spirituality in politics to that everyone equally. Then we can see a peaceful society irrespective of caste, class, religion and region. I have visited Sevagram in Maharashtra many times. I have transformed myself from violence to peace. Mahatma Gandhi warned us that politics without principle is deadly sin. Power without peace, compassion and ethics cannot deliver a lasting good. Spirituality in politics is not a luxury. It is an urgent necessity. Lasting change requires inner transformation, not outer instructions. Spiritual empowerment is simply self-mastery. Practice like Raja Yoga meditation calms the mind, replacing hasty reactions with wise reaction, compassionate decisions. Think of the people waiting for us today. The farmers waiting for relief, the youth waiting for opportunity, the women waiting for safety, the nation waiting for unity. Every one of these challenges is a test of our intent. As the Brahma Kumaris, when the self changes, the world changes. A peaceful society does not begin in the assembly or parliament, but in the politician's mind. We all should avoid hatred and communal speeches, then only we can build a peaceful society from today. We should take the path of spirituality for Vasudhaika Kutumbam. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Brahma Kumaris. Thank you so much.
Thank you very much, Sita Akkaji. और अब सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं. स्पिरिचुअलिटी हमें केवल अच्छा सोचने की प्रेरणा नहीं देती है, बल्कि राइट कॉन्शियसनेस के साथ हम राइट एक्शन भी करें, ये हमें आध्यात्मिकता सिखलाती है. और वो राइट एक्शन कैसे करें, कैसे हम शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करें, उसके लिए अपनी शुभ प्रेरणाएं देने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूं ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जी, जो चेयरपर्सन है पॉलिटिशियन सर्विस विंग की. आप मैसूर सब जोन की इंचार्ज हैं, बाल्यकाल से आप राज्यों का अभ्यास करती हैं, आपके अंडर सैकड़ों बहनें हैं जिनको आप पालना भी देती हैं और पूरा मैसूर जोन भी आप संभालती हैं. अनेक प्रकार की आप सेवाएं करते हुए भी बहुत सरलता और सभ्यता से जो है आध्यात्मिकता के लिए सबको प्रेरित करती हैं. तो मैं निवेदन करूंगी अपनी शुभ प्रेरणाएं देने के लिए मंच पर आए आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. ये शांति का महामंत्र ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रहस्य पूर्वक सिखाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो शांतिमय जीवन समाज देश विश्व में शांति की स्थापना करती है। आज इस उद्घाटन समारोह में आदरणीय मंच उद्घाटन करने हेतु हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत गोवा से पधारे हैं। उनको मैं बड़े प्यार से आदर पूर्वक स्वागत करती हूँ और आदरणीय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महासचिव ब्रह्मा कुमार राजयोगी करुणा जी को भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज के जो विशेष हमारे आदरणीय आशा बहन जी अभी अपना उद्गार सुनाई हुई है श्रीमती धनसा रंसिया बहन और उपाध्यक्ष उषा बहन जी और विक्रम श्री विक्रम कुमार पूर्व मंत्री बिहार से भाई साहब को मैं अभिनंदन करती हूँ। लक्ष्मी बहन राष्ट्रीय संयोजक बहन जी को भी मैं अभिनंदन करती हूँ। श्री लक्ष्मणी दुबाले पूर्व मंत्री महाराष्ट्र से पधारे हैं, उनको मैं आदर से स्वागत करती हूँ। और हमारे अभिनंदन देने वाले रंगनाथ भाई और अभिन संच मंच संचालन करने वाली हमारे सपना बहन, सबको मैं अभिनंदन करते हुए आज की सभा हमारे सारे देश से आए हुए सेवादारी राजनेता राजकीय क्षेत्र से बड़े प्यार से दूर दूर से आप पधारे हैं। आप सबको मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राजनेता माना ही देश के आधार मुहूर्त और उद्धार मुहूर्त है। राजनेता अपना जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करना, अपनाना बहुत आवश्यक है। आज हम देखते हैं नेतागण भी अपना जीवन में आध्यात्मिकता के बारे में क्या समझा है। उन्होंने ये समझा है, आप सभी ने अभी तक का शास्त्रों में जो सुनाया है उस पर चलना, वही आध्यात्मिकता है। या तो कई लोग अपना जीवन को स्वच्छ शुद्ध बनाने के लिए तीर्थ यात्रा करना, वो भी आध्यात्मिकता। और अपना भविष्य जीवन के बारे में समझने के लिए भविष्यवाणी, ज्योतिष आदि सुनना, ये भी भरोसा रखते हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिकता माना ही आप लोग आज सुबह से लेकर राजयोग शिविर में हमारे आदरणीय आशा बहन जी द्वारा बहुत ही रोमांचकारी उनकी आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में सुने हैं। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता माना ही आत्मज्ञान को समझना, स्वयं को समझना। स्वयं को हम मंत्री या जो भी आपका पद है उसको समझते हैं, समाज में भी आपको उसी रूप से देखते हैं। वास्तव में आप कौन है उसको समझना बड़ी जरूरी है। आप ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर, चाहे पुरुष का चाहे शरीर स्त्री का, वो शरीर के रूप से आप नहीं है। शरीर जितना भी दिन रहेगा, इसका मूल्य इस शरीर के अंदर जो शक्ति है, चैतन्य शक्ति, अगर वो चले जाए तो शरीर विराम हो जाता है। शरीर को कोई यूज नहीं करते, ना रखते हैं, कितना भी बड़े पोस्ट पोजिशन में हो, शरीर छोड़ने के बाद कोई भी अपने घर में नहीं रखते। तो इसलिए आप अपने को, ये शरीर नहीं है, चैतन्य शक्ति है, शरीर को संभालने वाले शक्ति आत्मा है। आत्मा का ज्ञान की गहराई में जाना, उसका अभ्यास करना, अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो आत्मा में जब इतना आप दीप में जाएंगे आत्मा का ज्ञान को, नाम रूप कर्तव्य गुण, मैं कहाँ से आया हूँ, कब आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब आत्मा के ज्ञान से आपको समझ में आएगा। ये तीन दिन से जब मनुष्य को इतना ध्यान रहेगा, तभी उसके अंदर जागृति रहेगी, उसका जीवन में अलर्ट रहेंगे, मैं कौन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या साथ ले जाता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं, हम जब इस दुनिया में आए कुछ भी नहीं लाए, वापस जाते तो कुछ भी नहीं ले जाते, चाहे कितना भी शरीर के संबंधी हो, कितना लोग भी बड़े बड़े घर होते हैं संबंधियों का, और अपने पोस्ट पद भी बहुत बड़ा हो, कोई भी साथ में नहीं, धन दौलत भी साथ में नहीं, केवल जब से जन्म लिया, जन्म से मरण तक जो आपने कर्म का खाता बनाया है, कमाया है, चाहे बुरा चाहे अच्छा, जो भी कमाया वो आपके साथ चलता है। आज दुनिया में इतना मनुष्य का जीवन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कोई बहुत बड़े हैं, कोई नीचे है, धन दौलत है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने का भी नहीं है, ना मकान है ना दुकान है, ये सभी क्या है। ये भगवान ने किसी को ऐसे नहीं बनाया, सभी ने अपने अपने कर्म का फल के रूप से अनुभव कर रहे हैं। अभी बीती हुई जन्मों में हमने क्या किया, अभी अनुभव कर रहे हैं, कम से कम हम आगे क्या करना, आगे का जीवन, भविष्य जीवन जो उज्जवल करना है उसके बारे में, और वर्तमान समय में जो पुराने जन्म का हिसाब किताब का भोगना, जो दुख अशांति भोगते हैं, समस्या में उलझ गए हैं, उन सब से हमको छूटने के लिए आत्मा के ज्ञान से हमको शक्ति मिलती है, समझ मिलती है कैसे चलना है। खुद का राजा बनना है, राज्यों ज्ञान सिखाते हैं आत्मा का ज्ञान से, आज सभी गुलाम बन गए, कर्मेंद्रियों के गुलाम, देखने का भी गुलाम, सुनने का भी गुलाम, बोलने का, करने का, सब कुछ गुलाम जीवन है। आत्मा का ज्ञान से, आध्यात्मिकता से आप इस गुलामी जीवन से ऊपर उठकर आप चैतन्य राजा के जीवन, आप जैसे बोलेंगे ऐसे कर्मेंद्रियों को चलना है, कर्मेंद्रियों के रूप से काम करना है, अपना वर्तमान और भविष्य जीवन को उज्जवल बनाना है। ये शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मा का ज्ञान की समझ से प्राप्त होता है। उसको अभ्यास करना, अनुभव करना बहुत जरूरी है। आप सबके लिए 3 दिन मिला है, तो ये आप सभी बहुत ध्यान देके इसका अनुभव करने का प्रयास कीजिए। और दूसरा, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुख्य बात है परमात्मा को समझना। परमात्मा के बारे में क्या समझते हैं? आज जितने लोग हैं उतनी बातें बोलते हैं, परमात्मा वो है, परमात्मा ये है, सभी जगह जाते हैं, ये परमात्मा से उधर जाने से हमें अच्छा हो जाएगा, इधर जाने से हमें अच्छा हो जाएगा, मंदिर में जाते हैं, पूजा पुरस्कार करते हैं, बहुत भोग अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं भगवान को अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, फिर वापस आते, जैसे चलते वैसे रहते, जैसे रहते वैसे करते रहते, लेकिन वास्तव में परमात्मा को नहीं पहचाना। भगवान के बारे में दिल मन भटकता रहता है, मन एकाग्र चित्त नहीं है, क्योंकि भगवान की पहचान नहीं है। परमात्मा माना ही वह अजन्मा है, अव्यक्त है, अभोक्ता है, वह जनन मरण में नहीं आता, और शरीर पुरुष और स्त्री शरीर नहीं लेता, और दुख और सुख को नहीं भोगता है, इन सबसे न्यारा है, इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है। हम सभी इन तीनों बंधन में बंधे हुए हैं, जनन मरण में आए हैं, शरीर भी लिया है, इसमें सुख दुख का भोग रहे हैं, और हम अपने जीवन में अपना कर्म के ऊपर भी हमें ध्यान नहीं है, क्या कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इन सब बंधन से छूटने के लिए परमात्मा का ज्ञान को समझना और परमात्मा से सच्ची दिल से मन बुद्धि को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के मनुष्य स्वार्थ है। जब मनुष्य को दुख होता, समस्या होती, तब भगवान को याद करते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए तो भगवान को कोई याद नहीं करते। मैं हमेशा सुनाती हूँ एक कहानी, एक एग्जाम्पल। एक मनुष्य था, बहुत भक्ति करता था भगवान को, भगवान को कहते भोलानाथ। तो भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ, आपको क्या चाहिए? तो उसने बोला बहुत कुछ, हमको ये चाहिए वो चाहिए सब कुछ बोला। तो भगवान ने बोला मेरा एक शर्त है, उसको आप माने तो मैं आपको जो चाहिए सब कुछ दूंगा। उसने 2 मिनट सोच करके बोला ठीक है आप जो भी बोलिए। भगवान ने बोला आपको जो देता हूँ ना, जो चाहिए वो सब कुछ देता हूँ, लेकिन आपके बाजू वाले घर वालों को 2 गुना देता हूँ, तो आप उसमें खुश है? उसको बड़ा गुस्सा आया, खुशी क्या होती है? मैंने भगवान को याद किया, मैंने प्रार्थना किया, मेरे सामने भगवान प्रत्यक्ष हुआ, और भगवान कहता है मेरे से 2 गुना बाजू वालों को देता। फिर बोला भगवान को, भगवान मेरे को और 2 मिनट दो, मेरे को क्या चाहिए वो बोलूंगा। फिर उसने बोला 2 मिनट के बाद मेरा एक अंक चले जाए। मेरा एक अंक चाहिए तो बाजू वालों का 2 अंक चले जाएगा। इतना मनुष्य स्वार्थी है, खुद के लिए स्वार्थ वाल सब कुछ चाहता, दूसरों को अच्छा होना भला होना नहीं चाहता। तो क्योंकि मनुष्य ना भगवान को समझा है ना खुद को समझा है, केवल मुख से बोलते हैं हम सभी वसुदेव कुटुंब है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, ये सब मंदिर में तीर्थ यात्रा में रहेगा, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं रहेगा। तो इसलिए जब परमात्मा को सच्ची दिल से समझेंगे, हर वक्त भगवान की याद से पॉजिटिव चिंतन रहेगा, तो जो भी हमारे मन में नकारात्मक चिंतन है वो निकलता जाएगा, उसके वाइब्रेशन से हमारे साथ रहने वाले, चाहे घर में रहने वाले, चाहे समाज के लोग, चाहे देश में रहने वाले, विशेष हमारे नेतागण को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जहां भी जाएंगे, आप बहुत राजनेता के क्षेत्र के कामकाज में बहुत बिजी रहते हैं, आप घर वालों को देखने का, बात करने का, भोजन करने का भी टाइम नहीं रहता। लेकिन वे लोग भी आपसे बहुत नाराज है, दुखी है, अशांति है, उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना। कम से कम थोड़ा हफ्ते में एक दिन भी आप समय निकालेंगे, वे भी खुश होंगे। साथ में आप जो समाज की सेवा करते हैं उनके प्रति भी आपके क्षेत्र में एक दूसरों के ऊपर बहुत आरोप बोलेंगे, आपके ऊपर ये ऐसा आपका द्वेष है, आपके ऊपर बहुत ग्लानी करते हैं, ऐसे ऐसे सुनाते हैं, कुजली बहुत द्वंद्वत्व लाते हैं। लेकिन उस समय आपका मन चंचल नहीं होवे, मन दुखी नहीं होवे, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम आंखों से नहीं देखते हैं, केवल कान में सुन के हमारा मन को बिगाड़ देते हैं। आंख और कान में चार अंगुली इतना अंतर है। अब दूसरे लोग जो आके आपको सुनाते हैं उसमें कितना अंतर होगा। वो ध्यान रखते हुए किसी की बात को, व्यर्थ बात को सुन के आपको मन को बिगाड़ के उनको कोई द्वेष शत्रुत्व उनके साथ निभाने की संकल्प नहीं आना चाहिए। उसके लिए परमात्मा का ज्ञान की शक्ति होंगी, ध्यान करने की होंगी, मेडिटेशन करेंगे, भगवान के प्रति शुभ श्रेष्ठ भावना रखेंगे, भगवान को सब कुछ भूल करके एक भगवान को याद करेंगे, तभी आपके अंदर वो शक्ति आएगी। उस वाइब्रेशन से समाज परिवर्तन हो जाता है। तो मेडिटेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप 3 दिन यहाँ पर रहेंगे तो मेडिटेशन अच्छी तरह सीख के आपका जीवन को आदर्श बना के जो भी सबको आश्वासन दे के आते हैं आपके क्षेत्र में और सबको सच्ची दिल से कहना एक करना दूसरा ना हो के दोनों एक कतनी करनी दोनों समान करने के लिए आप आत्मा की शक्ति भर के भगवान से शक्ति लेके सबसे शुभ भावना की वाइब्रेशन लेके आप खुद भी शक्तिशाली होंगे और समाज की भी सेवा में आपका जीवन सफल होगा। ये आशा रखते हुए आप सबको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।
दीदी का भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने सुंदर विचार हमारे साथ शेयर करे। अभी तक हम विचारों को सुन रहे थे, अब कुछ क्षणों के लिए विचारों को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता केवल चर्चा का विषय नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने की चीज है, समथिंग टू एक्सपीरियंस। तो अभी अपने भीतर की शांति से जुड़ने के लिए राजयोग का सुंदर अभ्यास कराने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी, जो वाइस चेयरपर्सन है पॉलिटिशियन सर्विस विंग की। आप ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स की सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आपने रामायण और भागवत गीता के ऊपर काफी शोध किया है और आपके उसके ऊपर जो प्रवचन है आप पूरे भारत देश विदेश में करती हैं। टीवी चैनल पर भी आपके ये प्रवचन आते हैं। आपने कई आत्माओं के अंदर आध्यात्मिक जागृति की है, उनको स्वयं के साथ और परमात्मा के साथ जोड़ा है, राजयोग का अभ्यास कराया है। आपकी वाणी में ताकत है, वो शक्ति है जो सामने वाले को अनुभव करा देती है। तो ऐसी कई विशेषताओं से धनी हमारी राजयोगिनी उषा दीदी जी से
मैं निवेदन करूंगी कि हमें राजयोग का अभ्यास कराएं।
ओम शांति। निराकार विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का दिव्य आवाहन करती हूँ। आज के मंच पर आसीन हमारे सम्मानित श्री प्रमोद सावंत जी, CM गोवा, हमारे परमादरणीय करुणा भाई जी, परमादरणीय आशा दीदी जी, परमादरणीय लक्ष्मी दीदी जी तथा सभी सम्मानित भाई बहने, सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों जो आज विशेष राजनीतिक प्रभाग से जुड़े हुए तथा बी के भाई बहनों का परिवार, काफी देर से हमने बातें सुनी आध्यात्मिकता, राजयोग, शांतिपूर्ण समाज में कैसे एक पॉलिटिशियन का रोल है उसको स्थापित करने के लिए। याद आता है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा गीता में, अध्यात्म क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया, अध्यात्म अर्थात अध्ययन। जो आत्मा परमात्मा का अध्ययन करके स्वयं की कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिपत्य को स्थापित करे, अर्थात जो अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर राज अधिकार प्राप्त करे, वही अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी इज दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट। और आत्मा से कनेक्टेड क्या है? आत्मा की वास्तविकता, आत्मा के सतोगुण। आज सवेरे के सत्र में आप सभी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि आत्मा के सात गुण कौन से हैं। आत्मा के सात गुण हैं ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये हमारी वास्तविकता है। और मेडिटेशन, मना भीतर की ओर जाना और उस आत्मा के सात गुणों से स्वयं को एम्पावर करना, सशक्त करना। क्योंकि जो सशक्त होता है वो निर्भय होता है। और जब भीतर से निर्भयता आती है तो जैसे हमारे आशा दीदी ने बताया, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, ये सभी गुण हमारे कर्म में, व्यवहार में, कारोबार में स्वतः आने लगते हैं। तो स्वयं को सशक्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम एक ऐसी सुंदर आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे, अपने मन को ले चलेंगे उस यात्रा पर। और जब अपने आप को उन सद्गुणों से एम्बॉडीड कर देंगे, उस प्रभा मंडल में अपने आप को ले आएंगे, तो वो प्रभा मंडल के जो प्रकंपन है चारों ओर प्रवाहित होते हैं। और जब चारों ओर वो रेजोनेट होते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो हमारे आसपास के कण कण को भी प्रभावित करते हैं। हर एक इंसान को भी उस वाइब्रेशन से हम एम्पावर कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए उस यात्रा पर। स्वस्थ होकर के बैठेंगे, काफी देर से आप सुन रहे हैं बहुत रिलैक्स मोड में चले गए हैं, पीठ सीधी हो और दृष्टि सामने परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। अंतर चक्षु से स्वयं को देखें, एक चैतन्य ज्योति पुंज के रूप में ये शरीर मेरा वस्त्र है। वास्तव में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। आत्म के स्मृति स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हैं। और महसूस करें, रियलाइज करें अपने सतो गुणों को। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में बहुत शुद्ध पवित्र स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर प्रकाश का प्रभा मंडल विकसित हो रहा है। मैं पवित्रता का प्रकाश पुंज हूं। मेरा स्वगुण स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। मेरा मन शांत होता जा रहा है। विचार शांत होते जा रहे हैं। चारों ओर शांति के प्रकंपन को अनुभव कर रही हूं। शांति मेरी वास्तविकता है। शांत मनस्थिति में स्वयं को स्थित करती हूं। इसी शांति में सच्चा सुकून समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख शांति स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद है। मैं सत चित आनंद स्वरूप मेरा सत्य स्वरूप मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। धीरे धीरे मैं अपने मन को उस परम पिता परमात्मा की ओर ले चलती हूं, जैसे मैं चैतन्य प्रकाश पुंज हूं वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप परमात्मा का तेज प्रकाश की किरणें मेरी ओर प्रवाहित हो रही है और मैं आत्मा उस परमात्मा शक्ति की ऊर्जा की किरणों को स्वयं में समाहित कर रही हूं। परमात्मा शक्ति से स्वयं को सशक्त करती जा रही हूं। कितना दिव्य अलौकिक अनुभव है ये। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को चारों ओर प्रवाहित होने देती हूं। मैं स्वयं सशक्त होकर इन प्रकंपनों को चहुं ओर फैला रही हूं। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। मेरे मन का सारा तनाव दूर हो रहा है और मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूं। ओम शांति शांति।
Om Shanti. Thank you, Didi, for connecting us with inner peace and Almighty God. A very beautiful and charging experience of Rajyoga meditation. Rajyoga meditation hame recharge rejuvenate karta hai, and thank you again for such a beautiful experience. Aur ab wo samay aa gaya hai ki hum sabhi sammanit atithiyon se main namra nivedan karti hu ki vah deep prajwalan dwara sammelan ka vidhivat udghatan karne ke liye aaj ke इस उद्घाटन सत्र के और कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट श्री प्रमोद सावंत जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, आज के हमारे अध्यक्ष बीके करुणाबाई जी, महासचिव ब्रह्मा कुमारी, सीता अक्का जी, माननीय मंच के सभी वरिष्ठ दीदियां भाई, और सभी से मेरा निवेदन है कि आप आगे आएं और विधिवत दीप प्रज्वलन करें। सभा में बैठे हुए जो हमारे माननीय अतिथि हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके रखें और ऐसे दिखाएं, तो आप सब भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो विधिवत हम उद्घाटन करने जा रहे हैं राजनीतिज्ञों के इस सम्मेलन का। हमारे गोवा के चीफ मिनिस्टर श्री संबोद सावंत जी के साथ।
शांति का दीप जले, सत्य का दीप जले, सेवा और सद्भाव का हर मन में दीप जले, राजनीति बने जन सेवा, यही हमारा संकल्प रहे।
आध्यात्मिक मूल्यों की ज्योति से हर भारतवासी धन्य रहे।
ये दीप केवल ज्योति नहीं, जन विश्वास का सम्मान है।
नहीं सेवा का पथ हो, यही नेतृत्व की पहचान। हर नेता के पावन जीवन से मुस्काए अपना हिंदुस्तान।
ये दीप केवल ज्योति नहीं, जन विश्वास का सम्मान है। हर निर्णय में न्याय की
अहंकार मिटे, प्रेम के पुष्प खिल जाए,
करुणा धैर्य और विनम्रता से हर।
और अब मैं अत्यंत हर्ष और सम्मान के साथ हमारे मुख्य अतिथि गोवा के यशस्वी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से नम्र निवेदन करूंगी कि अपने विचार आज के इस राजनीतिज्ञों के सम्मेलन के प्रति हमारे साथ साझा करने के लिए। आप पब्लिक सर्विस में व्यस्त होते हुए भी आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हमारे साथ आज इस सभा में हैं। आपने मेडिकल क्षेत्र से आगे बढ़े और जन सेवा के लिए की यात्रा आरंभ की। आपका स्वभाव बहुत सरल है। गोवा में आपने सेवा भाव और वैल्यू बेस्ड जो नेतृत्व के लिए आप बहुत ही अच्छी तरह से जाने जाते हैं। और अभी जब मैं थोड़ा समय पहले आपसे मिल रही थी, तो मेरा को देखकर मुझे यही थॉट आया कि भारत के जो यंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनमें से आप एक हैं। तो यूथ के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणादायक है हमारे लिए कि इस उम्र में आप कैसे जन सेवा कर रहे हैं,
जबकि इस उम्र में ज्यादातर यूथ के अंदर जो इच्छा अलग होती है कि हम अपने लिए समय निकालें और दूसरे तरह का जीवन जिए, और आपने अपना यंग जीवन जो जन सेवा के लिए लगाया है, मैं कहूंगी ये हमारे यूथ के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो हम सब जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने प्रेरणादायक विचारों से हमें लाभान्वित करें।
ओम शांति। राजनीतियों का इस सम्मेलन जिस शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीति में आध्यात्मिक, इस आज के इस कार्यक्रम में हमें जिनका मार्गदर्शन मिला, बी के आशा दीदी जी जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने प्रवचन से हमें यहां मंत्रमुग्ध किया, श्रीमती सीता अक्का विच इज अ गन टू पेन, सही में यानी आपकी स्टोरी जो सूत्र निवेदिका ने बताया इज एन इंस्पायरिंग फॉर अदर्स, श्री बी के लक्ष्मी मैसूर दीदी जी आपका उद्बोधन हमें बहुत ही प्रेरणादायी रहा, और लास्ट में बी के उषा दीदी जी जिन्होंने हमें राजयोग में यानी मंत्रमुग्ध किया, इसीलिए मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस मंचसीन ब्रह्म कुमारी संस्था के आदरणीय वरिष्ठ बहने और एवं भाई, देश विदेश से पधारी यहां जनप्रतिनिधिगण, नीति निर्माता विशिष्ट अतिथिगण तथा उपस्थित सभी देवतुल्य भाई और बहनों, हम सब पॉलिटिशियन हैं, और जब तक पॉलिटिशियन हमें क्या फायदा है ये जब तक नहीं जानते तब तक हम काम नहीं करते, चाहे वो आध्यात्मी में हो या चाहे वो पॉलिटिशियन में हो। आध्यात्म भी हम सब यहां पे आए हैं कि हमें फायदा हो, कि हम यानी आध्यात्म से जुड़े और वही आध्यात्म हम लोगों तक किस तरह से पहुंचाए, और दूसरी बार फिर से चुनने के लिए हमें क्या फायदा हो, ये पढ़ने के लिए हम सब यहां पे आए हैं। मैं जस्ट आपसे आध्यात्म के बारे में तो ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं, मंचसीन जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो आपसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बात कर सकता हूं। बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं बस एक कुछ आपसे कुछ बातें मैं शेयर करूंगा, और वही बातें क्योंकि जो प्रैक्टिकल हो, वही बातें जो हमें यूज आए और वही आगे राजनीति में हम किस तरह से यूज कर सके। मुझे लगता है कि आप में से कितने लोग एट प्रेजेंट राजनीति में हैं और कितने लोग राजनीति में थे, थोड़ा सा हाथ ऊपर करें। चलो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आपके लिए जोरदार तालियां लगाए। कितने लोग चाहते हैं कि अपनी राजनीति कंटिन्यू करें, तो हाथ भर ऊपर रखता है। चलो सभी लोग चाहते हैं कि राजनीति में कंटिन्यू करें। नए कितने लोग हैं जो अभी राजनीति में नहीं है लेकिन जो राजनीति में आने की उम्मीद रखते हैं, वो हाथ ऊपर उठाए। दैट इज ट्रू। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। इस सभागृह में मैं जब से बैठा था तब से देख रहा था कि दीदियों ने बहुत सारे लोगों को तो बुलाया है, 3 दिन के लिए तो और भी लोग आने वाले हैं, कुछ लोग तो आए पीछे बैठे और चले भी गए। उनको मुझे लगता है कि चलो दीदी ने बताया इसलिए तो आना है, तो कम से कम माउंट अबू तो देखो, यानी आध्यात्मिक की तो बात अलग है, कम से कम इसी बहाने घूमने भी हो जाएगा, तो इसीलिए वो आए। उन लोगों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं लगा होगा कि इस हमें कुछ फायदा हो भी सकता है या नहीं, वो तो चले भी गई हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो मेरे सामने बैठे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, और खास करके आशा दीदी ने जो पॉलिटिशियन के लिए 5 चीज बताई है, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर और कम्युनिकेशन, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियंस। आप जब तक ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस आप बिल्ड नहीं कर सकेंगे, आपका कॉम्पिटिटिवनेस जब तक नहीं रहेगी, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा, और आपका कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा तब तक आप राजनीति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम सबको लगता है कभी कभी यानी ये आध्यात्म से मिलता है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये सब कुछ आध्यात्म से ही मिल सकता है और किसी से नहीं है। इसीलिए तो आशा दीदी जब बता रही थी तब उनका कहने का जो उद्बोधन था वो एक कॉन्फिडेंस से बता रही थी, जो उनका इतने सालों का जो ट्रस्ट है यानी इस नीति के ऊपर उसी ट्रस्ट के बारे में वो बता रही थी। उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस जो इस सब्जेक्ट पे है वही एक्सपर्टीज वो बता रही थी, और खुद के ऊपर जो विश्वास है खुद का यानी वही उसी के ऊपर वो बता रही थी कि कैरेक्टर किस तरह से मायना रखता है। और ये सब कुछ होने के बाद जब तक हमारा कम्युनिकेशन लोगों से ठीक न हो तब तक हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम राजनीति में आए हैं यानी लोगों के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ कि लोग ही सर्वोपरि है, हम तो लोगों के लिए काम करने के लिए। लेकिन सही में राजनीति में आने के बाद वही दिखता है क्या, यानी वही होता है क्या? मैं तो कहूंगा कि पावर टू मेक द पॉलिसीज, हम राजनीति में आते हैं कुछ हम पीपल के लिए करें, लोगों के लिए करें, और वही यानी करने के लिए हम सभी लोग यहां पे आते हैं। हम यानी जब भारत देश की बात आते हैं तब यानी वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक हैं, चाहे वो किसी भी दल में रहो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी भी स्टेट में हो, लेकिन आफ्टर ऑल द कंट्री इज फर्स्ट, द नेशन फर्स्ट तत्व पे हम सब काम करते हैं, पीपल फर्स्ट इसी तत्व पे हम काम करते हैं। हमारे लिए लोग प्रथम है, देश प्रथम है, लोग प्रथम है, बाकी सब कुछ बात में है। और वही तो अपने लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एन द कॉन्स्टिट्यूशन वी कॉल इट इज एन मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अपने अपना संविधान देखा तो विच इज एन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर ही अपना काम चलता है। इसीलिए आज के इस शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनीतिक आध्यात्मिक का मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को अभिनंदन भी करता हूं, और सही में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, जब राजनीति केवल एक सत्ता नहीं है, राजनीति तो समाज का सेवा और संकल्प से करने का एक साधन है। आर्य चाणक्य ने बहुत सही से कहा था कि प्रजा सुखम राजा प्रजानम हिते हितम नात्मा प्रियम हितम राजा प्रजानम तु प्रिय हितम। इसका मतलब है जो प्रजा का सुख है वही तो राजा का सुख है, जो राजा को सुख जो चाहिए वो तो राजा कभी ले नहीं सकता जब तक वो प्रजा का सुख हो। इसीलिए हम चाहे कोई भी हो, चाहे वो पंचायत का प्रतिनिधि हो, काउंसिलर का प्रतिनिधि हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, लेकिन वो प्रजा के लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहे और प्रजा के सुख में ही खुद का सुख देखे, तभी हम प्रजा के लिए काम कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आज के इस समय पर मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में राजनीति केवल एक शासन चलाने का माध्यम नहीं है, ये तो समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए यानी सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम हम सब करते हैं। मैं इस उदाहरण देते हुए कहूंगा कि कोविड के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया। वही आत्मनिर्भर भारत का नारा मैं कहूंगा कि मेरे खुद के राज्य में विजिडेंट स्वयंपूर्ण गोवा बोला तो सेल्फ रिलायंस गोवा, यानी दीदी यहां पे बैठी है खुद जानती है, गोवा हो विजिडेंट टोटली डिपेंडेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर पीसीकल्चर डेयरी फार्मिंग विच इज द डिपेंडेंट ऑन द अदर स्टेट। हमने चाहा कि चाहे तो हम भी स्वयंपूर्ण बन सकते हैं, हम भी सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। वही को आगे लेते हुए आज प्राउडली हम कहते हैं कि हर एक पंचायत तक, हर एक नागरिक तक पहुंचाने का, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% यानी हर एक राज्य की योजना, हर एक केंद्र की योजना उन लोगों को पहुंचाने की कोशिश हमारे रही। और हम हर घर नल से जल लेके हर घर शौचालय या हर घर बिजली, हर ग्राम सड़क, इस तरह की सभी योजनाओं में, विच इज द 100% योजनाओं में, मोर देन 90% योजनाओं लोगों को पहुंचाने तक हम सक्सेसफुल रहे, यही यानी राजनीति में सफलता मैं कह सकता हूं। और इसी के साथ साथ जो मैं कहता हूं कि लोगों को प्रवृत्त करना एग्रीकल्चर सेक्टर में आने के लिए, डेयरी सेक्टर में आने के लिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आने के लिए, जो हम 100% इम्पोर्ट कर रहे थे बाकी राज्य से, आज हम प्राउडली कहते हैं कि हम हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट करके कुछ चीजों हम 20% एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दैट इज अ सेल्फ रिलायंसी इन अवर स्टेट विच वी हैव अचीव्ड थ्रू इसके लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में सिर्फ राजनीति खुद के लिए नहीं होती, तो राजनीति ये भारत की सांस्कृतिक और सदैव संदेश देने के लिए ये राजधर्म वही है जिसमें जनकल्याण सर्वतोपरि काम करने के लिए हम राजनीति में हैं। और इसी को आगे रखते हुए पूरा इतिहास दीदी जी ने तो बताते वक्त राम राज्य का उल्लेख किया, कृष्ण भगवान का उल्लेख किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी उल्लेख यह मैं करूंगा। राम राज्य ने आदर्श राम राज्य किस तरह से हो सकता है और आदर्श शासन जब भी हम बात आती है तब कहते हैं कि राम राज्य की तरह से राज्य हो, वही सही में राज्य हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो हम कहते हैं कि निष्काम कर्तव्य और लोक संग्रह का संदेश किसी ने दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है तो स्वराज्य और सुराज्य ये केवल विजय के लिए नहीं है, तो स्वराज्य और सुराज्य ये तो धर्म, संस्कृति और जनकल्याण के रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस सुराज्य की स्थापना करने का की बात की। इसलिए इस जब हम भारत देश का इस इतिहास देखते हैं तो इतिहास से जाते वक्त यानी यही बातें आगे आती हैं, उनमें से कुछ भी बात हमने ली तो हम इस देश के प्रगति के लिए ने गांव से लेके तहसील तक और तहसील से लेके राज्य और राज्य से लेके देश तक हम सब काम कर सकते हैं। आज के इस ई युग में या 21st सेंचुरी में जब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इस सब की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आती है, तब भी हम देखते हैं कि समाज में यानी वही राजनीति यानी उसी राजनीति से बहुत ही अच्छी तरह से यानी आगे बढ़ सकती है। फिर भी अपने समाज में जो कटुता है, अपने समाज में डिवीजन है, अब आज भी लोक, जात, धर्म इसी के आधार पे जो राजनीति चलाते हैं, इससे थोड़ा दूर जाने के लिए मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी ने जो स्पिरिचुअलिटी राजनीति में लाने के लिए बात की है, यहाँ पे किसी धर्म, जात और पंथ की बात नहीं कही है, सभी को एक साथ में लेते हुए किस तरीके से अपने देश को हम आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, वही प्रगति करने के लिए आज भी इस 21st सेंचुरी में ये बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन वो करना बहुत ही जरूरी है। मैं इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉलिटिकल लाइफ। द स्पिरिचुअलिटी होने के कारण इसका बेनिफिट इट इज नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स, खुद के लिए ही नहीं तो बल्कि पूरे समाज के लिए हो सकता है। जब पॉलिटिकल लीडर जब स्पिरिचुअलिटी में आता है तो बाकी पूरे समाज को वो स्पिरिचुअलिटी उनमें लाने में डेफिनेटली वो काम कर सकता है। इसलिए द स्पिरिचुअलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियन, ऐसे मुझे लगता है। मैं इसी के ऊपर ज्यादा बात न करते हुए ब्रह्म कुमारी जी, प्रजापिता जिस तरह से सालों से काम ग्लोबल लेवल पे और अपने देश लेवल पे इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, और खास करके जो काम यानी स्पिरिचुअलिटी लोगों में फैलाने का काम, और खास करके अभी जो उन्होंने जो कैंपेन चलाई है विच इज एन नशा मुक्त भारत, इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमें हम जो विकसित भारत की संकल्पना आगे लानी है तो इस देश का युवा मीन्स युवा हो या युवती हो इसके लिए वो नशा मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। मैं आज सुबह से जब माउंट आबू पे पूरे आश्रम द ग्लोबल हॉस्पिटल जब देख रहा था, मैं दीदी और भाई लोगों से जब मिल रहा था तो हर एक के मन में यानी नशा मुक्त भारत नशा मुक्त युवा इनकी संकल्पना आगे आ रही थी। मैं इस काम के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे मैं खुद हमारे राज्य गोवा राज्य में नशा मुक्त गोवा करने के लिए आपको आपके साथ में रहूंगा। हम मिलके नशा मुक्त गोवा और नशा मुक्त भारत करने में हम हमेशा के लिए आगे रहेंगे। मैं इसी बात को आगे दौड़ाते हुए बस विरासत और विकास जो दोनों चीज यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वही विरासत जो हम आश्रम घूमते हुए देखते हैं, मैं आध्यात्म परमात्मा के ऊपर तो बात ज्यादा नहीं कर सकता हूं लेकिन बस ये बात जरूर कहूंगा द विरासत विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट विच गिव्स इन अवर लाइफ, वही विरासत हम यानी कहां से आए और कहां जाने वाले हैं, वही तो यानी ये तो यानी फिजिकल हैप्पीनेस एंड मेंटल हैप्पीनेस फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वही आध्यात्म हमें पढ़ाता है और वही विरासत आगे लेते हुए हमने विकास भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आज वही विकास हम देश में देख रहे हैं, वही विकास हम सभी जगह पे देख रहे हैं, वही विरासत का संभाल करते हुए गोवा में विकास भी हम अच्छी तरह से कर रहा हूं। मैं ब्रह्म कुमारी दीदी जो गोवा में है उन्होंने 20-25 साल से गोवा में बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है और हर वक्त आध्यात्म लोगों को समझाने का काम चाहे वो यानी शिव जयंती हो या चाहे वो शिवरात्रि हो सभी को किस तरह से शिव महात्म्य समझाए किस तरह से आध्यात्म समझाने का काम हमेशा के लिए जितने सारे ब्रह्म कुमारी दीदी गोवा में हैं वो हमेशा के लिए लोगों के साथ में रहते हैं। मैं इस अवसर पर फिर एक बार आप लोग जो यहाँ पे आए हैं उनका नेतृत्व वास्तविक रूप से आपके बीच में 3 दिनों के अंदर डेफिनेटली परिवर्तन आ जाएगा, वही परिवर्तन आप समाज में भी वही परिवर्तन लाएंगे। आपका नेतृत्व के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वही यानी राजनीति में आध्यात्मिक अर्थ से विशेष करके पंथ प्रचार का काम करने के लिए हम सत्यनिष्ठा कर्तव्य निष्ठा आत्म अनुशासन करुणा निष्पक्षता और लोक मंगल की भावना आपके मन में सदा रहे यही शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। और जो विभिन्न राज्य से यहाँ पे आए हैं वही सभी लोग चाहे वो किसी पंथ से हो चाहे वो किसी पार्टी से हो लेकिन हमारे लिए राष्ट्रहित और जनकल्याण की भावना हम आगे लेते हुए शांतिपूर्ण समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास भी और विरासत भी उसका काम आगे लेके जा रहे हैं ना बल्कि भारत देश में तो बल्कि पूरे ग्लोब में आपने देखा तो योग और आयुर्वेदा जिसके बारे में सिर्फ अपने ही देश में जिसके लिए यानी उतना इम्पोर्टेंस इतना मायना कोई नहीं रखता था वही योग वही आयुर्वेदा वही नेचुरोपैथी आज पूरे ग्लोब में मोर देन 180 कंट्रीज में लोगों ने योगा दिन मनाने रहे हैं। आज आयुर्वेद और नेचुरोपैथी इनमें लोग आज बिलीव करने लगे हैं वही अपना पुरातन भारतीय साइंस को एक्सेप्ट करने की ताकत इस सभी में है वही यानी विरासत के साथ साथ विकास भी जो माननीय मोदी जी आगे ले रहे देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो वही विकसित भारत करने के लिए मुझे लगता है आप सभी लोगों का योगदान हमेशा के लिए रहेगा। इसी के साथ साथ मैं ब्रह्म कुमारी जी का इस जो कार्य माउंट अबू और पूरे ग्लोब और देश में जो चल रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोग जो राजनीति में नेतृत्व करने के लिए जो आगे आए हैं, खास करके यूथ मुझे जो सामने दिख रहे हैं, वेविंग द पहले आपको बहुत सालों तक राजनीति और समाज के प्रति आदर भावना से काम करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग एंड एनलाइटनिंग एड्रेस। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड वर्ड्स ऑफ विजडम। आप हमारे सामने एक पॉलिटिक्स इन एक्शन है। गोवा हैज विटनेस्ड सेवरल नोटेबल इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर। आपका क्योंकि जाना है तो आपका हमारे आदरणीय करुणाबाई जी शॉल पहनाकर आपका सम्मान कर रहे हैं। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आप यहाँ पधारे। लक्ष्मी दीदी जी और आशा दीदी जी भी आपको निराकार परमात्मा शिव का फोटो फ्रेम देकर, प्रसाद देकर छुट्टी दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहें और हम सबका मनोबल और उत्साह बढ़ाते रहें। आप अभी शांतिवन के लिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि शांतिवन परिसर का भी आप अवलोकन करेंगे और वहां पर हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जो एडिशनल चीफ है ब्रह्मा कुमारी से, उनसे भी मिलेंगे। तो आपका हम पुनः दिल से बहुत 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 स्वागत है और धन्यवाद भी करते हैं कि आप यहाँ पधारे। सत्र आगे भी है, सभी बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा क्योंकि ये उद्घाटन के साथ खुला सत्र एक भी है, तो सत्र आगे बढ़ेगा। और सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करने जा रही हूँ, श्री विक्रम कुंवर जी जो पूर्व मंत्री हैं बिहार से, आपका 40 वर्षों की पॉलिटिकल जर्नी है, आप कई बार एमएलए रह चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगी कि आप संक्षिप्त में अपने शुभ विचार हमारे साथ साझा करें। सभी लोग बैठ जाएं। मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि सभी प्लीज बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, सभी से निवेदन है। आपका फ्लाइट है, आपको जाना है, आपका हम सम्मान पूर्वक हम उनको विदाई देंगे। आप सब भाई बहनों से निवेदन है कि सभी अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैं भाइयों से निवेदन करूंगी थोड़ा मैनेज करने में हेल्प करें, सभी जो हैं बैठ जाएंगे। अभी सत्र को हमें आगे बढ़ाना है, सभी बैठ जाएं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और मैं विक्रम कुंवर जी से कहूंगी जो जेपी कमिटी के भी मेंबर रहे हैं, जो जयप्रकाश आंदोलन रहा उसके भी आप मेंबर रहे हैं, तो आज के विषय के ऊपर अपने शुभ विचार संक्षिप्त में देंगे।
माननीय अध्यक्ष जी, देश के कोने कोने से आए राजनीति सम्मेलन में भाइयों, बड़े खुशी की बात है कि आज राजनीति में मेडिटेशन और के लिए जो राजनीति आज के विदेश की राजनीति है, उस राजनीति में आज मेडिटेशन और का बहुत जरूरत है। क्योंकि पहले जो राजनीति था आज वो राजनीति नहीं है, पूरे देश की राजनीति का वही हाल है। पहले कार्यकर्ता से लोग नेता बनते थे, पहले चाल चरित्र चेहरा देखा जाता था, आज ये नहीं देखा जाता है। आज ये देखा जाता है कि किसके पास माल है, किसके पास पैसा है, कहीं से लाओ उसको लड़ाओ। देश में करप्शन इतना बड़ा फैल गया है नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक, मैं इस समिति से आग्रह करूंगा कि उस पर भी कुछ हम लोगों को करना चाहिए, करप्शन के खिलाफ भी पूरे देश में आवाज उठाना चाहिए। आपने ये जो आवाज उठाई है, मैं आग्रह करूंगा कि अगले साल और भव्य कार्यक्रम करिए, हम लोग से जो सहयोग बने हम लोग से लीजिए, अपने प्रदेश से अच्छे अच्छे नेताओं को ले आवेंगे, आपको सहयोग करेंगे और मदद करेंगे। और मैंने जो मुद्दा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, शराबबंदी तो बिहार में है, नीतीश कुमार ने तो पहला काम किया कि शराबबंदी लागू किया, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि ये काम हमको करना है तो करना है, और नहीं तो जो हालत देश का है भाई, हम लोग बैठे मीटिंग करते रह जाएंगे तो देश का हालत आगे चल के बहुत खराब होगा। इन्हीं सब से सुधारने के लिए हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि तमाम मतभेदों को भुला करके देश में जो करप्शन है, क्राइम है, उस पर भी इस संस्था को सोचना चाहिए, रुकने का काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री विक्रम कुंवर जी का, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार के। और अब मैं उद्बोधन के लिए निवेदन करने जा रही हूं हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी, जो राष्ट्रीय संयोजिका हैं राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग की। आप बचपन से ही राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, पिछले 50 वर्षों से आप ईश्वरीय सेवा में हैं। सोनीपत रिट्रीट सेंटर जो सोनीपत में है ब्रह्मा कुमारी का, आप उसकी डायरेक्टर भी हैं। तो आज के इस विषय पर अपने विचार देने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव एवं सभा में उपस्थित राजनीति प्रभाग से जुड़े हुए सभी महान विभूतियां, आज के विषय पर बहुत सुंदर चर्चा मेरे से पूर्व वक्ताओं के द्वारा, जो बहुत ही अनुभवी हैं, आशा दीदी जी के द्वारा, उषा दीदी जी के द्वारा, लक्ष्मी दीदी जी के द्वारा और विशेष हमारे मुख्य अतिथि जी के द्वारा हम सुन चुके हैं। फिर भी मुझे आदेश हुआ है तो मैं थोड़ा सा कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगी। विषय है शांतिपूर्ण समाज के लिए राजनेताओं के जीवन में आध्यात्मिकता। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा चिंतन इस बात पे करना है कि शांतिपूर्ण समाज किसे कहेंगे। ऐसा समाज जिसके अंदर सबके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सद्भावना हो, क्योंकि जब भी हम एक अच्छे समाज को सामने लाते हैं तो उसमें हम राम राज्य को ही सामने लाते हैं। और राम के राज्य की जो महिमा है उसके अंदर कहा गया है, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, सब आपस में एक दूसरे के साथ जहां बहुत प्रेम करते हैं, शुभ भावना रखते हैं, किसी को कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसे समाज के निर्माण में, शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में प्रेम भाव होना बहुत जरूरी है। साथ साथ वो समाज शांतिपूर्ण समाज कहा जा सकता है जिसमें नारी का सम्मान हो, उसी समाज को शांतिपूर्ण समाज कह सकते हैं जहां किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो। यहां भी अगर हम श्री राम के राज्य को देखें तो श्री राम ने एक आदर्श उपस्थित किया एक अच्छे समाज के लिए कि उन्होंने गिरे हुओं को उठाया, वंचितों को गले लगाया, चाहे वो निषाद थे, चाहे वो छोटी जाति के थे, उन सबको आगे बढ़ाया, उन सबको ऊपर उठाया, केवट को ऊपर उठाया, निषाद को ऊपर उठाया, भिलनी को सम्मान दिया और उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया, सुग्रीव को गले लगाया जो वंचित था, जो जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। तो हमारे जो राजनेता हैं, उनके जीवन के अंदर ये विशेषता होना बहुत जरूरी है यदि वो शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं। और शांतिपूर्ण समाज में चरित्र और नैतिकता सबसे ऊपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समाज में हम देखते हैं जितना भी दुख है, अशांति है, अन्याय है, पीड़ा है, उसका कारण यही है कि जो नैतिकता और चरित्र है उसके प्रति आज जो सोच है वो बिल्कुल बदल चुकी है। हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी आज किधर जा रही है। जिस राम राज्य की, जिस कृष्ण के राज्य की हम महिमा गाते हैं, जहाँ एक एक बालक मोहन के समान था, एक एक बालिका राधा के समान थी, आज की बालिकाओं को अगर हम देखें, अभी अभी की जो घटनाएं हैं वो हम देखते हैं, एक कन्या ने अपनी माँ का मर्डर करवा दिया इसलिए कि उसकी जॉब मिल जाए, उसकी संपत्ति मिल जाए। तो हम देखते हैं आज हमारा समाज, हमारे युवा, हमारे जो बच्चे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। और ऐसे समाज के अंदर अशांति का होना, पीड़ा का होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक घटना के साथ हजारों लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे समाज के अंदर कैसे परिवर्तन लाया जाए, उन जीवन मूल्यों को फिर से कैसे विकसित किया जाए। महाभारत का एक छोटा सा वृत्तांत आता है कि भीष्म पितामह जब बहुत पीड़ित हो जाते हैं दुर्योधन के व्यवहार से और अपनी सारी व्यवस्था से, तो वो जाकर के माँ गंगा के सामने, जब जब दुखी होते थे तो अपनी माँ के पास चले जाते थे, और वो कहते हैं कि माँ, वो मूल्य जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे, आज जब उनका हनन हो रहा है तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब गंगा मैया ने उन्हें एक बहुत सुंदर प्रोत्साहन दिया कि देखो, सीढ़ी जो होती है एक ही होती है, उसी से इंसान ऊपर चढ़ता है और उसी सीढ़ी से ही वो नीचे उतरता है। तो मूल्यों का हनन नहीं हुआ, लेकिन जब इंसान उन मूल्यों का सही रूप से पालन करता है तो वो जीवन में उन्नति करता है, वो सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। लेकिन जब वो उन मूल्यों की अवहेलना करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तब जीवन में गिरावट आती है। तो सचमुच में आज के समाज में जो मूल्यों की गिरावट है, जो चरित्र की गिरावट है, उसके अंदर हमारे राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो एक किस्म से शासक हैं, राजा हैं, उन्हें प्रजा ने चुना है, तो इसलिए उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और वो अगर खुद रोल मॉडल बनते हैं और पक्षपात रहित राजनीति करते हैं तो सचमुच में वो जीवन को बहुत अच्छा, समाज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस राजनेता के जीवन में आध्यात्मिकता का होना बहुत जरूरी है। अध्यात्म के ऊपर भी काफी सारी चर्चा हम सुन चुके हैं कि अध्यात्म किसी धर्म का, किसी रूढ़िवाद का, किसी पूजा पाठ पद्धति का माला फेरने का नाम नहीं है। अध्यात्म माना अपनी आत्मा को रियलाइज करना, आत्मा का अध्ययन करना, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं उस ईश्वर पिता की संतान हूँ, मेरा इस जीवन, इस सृष्टि पर आने का मकसद क्या है, उसे समझना और सारी सृष्टि को ही अपने परिवार के रूप में देखना। हम सभी देखते हैं कि भारत देश की एक बहुत बड़ी सनातन संस्कृति की खूबी है वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण सृष्टि हमारा परिवार है। और परिवार किस नाते से है कि हम सबके अंदर एक आत्मा है और हम सब एक ईश्वर पिता की संतान है, और उस पिता की संतान होने के नाते सब अपने हैं, सब भाईचारा है सबके प्रति। और हम उसका एक उदाहरण, भले कितनी भी गिरावट आई मूल्यों की, लेकिन हम देखते हैं फिर भी इस भारत देश के अंदर दूसरों के प्रति, सबके प्रति प्रेम है, भाईचारा है। कोविड के समय हमने देखा कि कुछ देशों के पास उसकी जो इलाज के था, उनके पास वैक्सीन थी उनके पास, लेकिन उन्होंने नहीं दी, बहुत बड़ी कीमत पर भी नहीं दी। लेकिन भारत देश ने दो वैक्सीन डेवलप की और भारत ने अपने लोगों को तो फ्री दी ही दी, लेकिन 100 से भी अधिक अन्य देशों को भी फ्री दी। तो ये है वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं, ये एक जो भाव है। और यही भाव जब हमारे राजनीतिज्ञों के अंदर होता है तो वो समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। और जैसे जैसे एक राजनेता राजयोगी बनके मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर जिन शक्तियों का विकास होता है, एक आंतरिक शक्ति, क्योंकि राजनेता का जीवन ऐसा होता है राजनीतिज्ञों का कि जिनके सामने कभी भी कोई भी परीक्षा आ सकती है, तो उस समय अगर उसके मन का संतुलन ठीक होगा, धैर्य होगा, शांति होगी, तो वो हर समस्या को सहज ही सुलझा सकता है। इसलिए उसके जीवन में आध्यात्मिकता का, मूल्यों का होना नितांत आवश्यक है। आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, मनोबल बढ़ता है, सबके प्रति प्रेम जागृत होता है, और वो सबके साथ जो कम्युनिकेशन की बात थी, छोटे हैं या बड़े हैं, सब अपने हैं समाज के अंदर, सबकी सुनना, सबको समाधान देना, ये जो प्रेम और भाईचारा है वो समाज के अंदर तभी ला सकता है जब वो खुद प्रतिदिन थोड़े समय के लिए, 10 मिनट के लिए भी उस ईश्वर पिता को याद करता है, मन को उसके साथ जोड़ता है, तो वो आंतरिक शक्तियां मिलती हैं जिससे वो अपने जीवन को भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी, और अपना जो समाज सेवा का जो उसका कर्तव्य है उसको भी अच्छी तरह से निभा सकता है। तो इसलिए शांतिपूर्ण समाज में हमारे राजनीतिज्ञों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसका केवल मात्र एक ही तरीका है कि वो अपने जीवन के अंदर उन मूल्यों का समावेश करे, उस ईश्वर पिता को याद करे, उन शक्तियों को अर्जित करे और उसे समाज की शांति के लिए उन शक्तियों का सदुपयोग करे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का। बहुत सुंदर विचार हमारे सामने हमारे माननीय वक्ताओं द्वारा आ रहे हैं। और अब इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी शुभकामनाएं देने के लिए श्री लक्ष्मण राव डोबले, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के, एक वरिष्ठ राजनेता हैं, आपका लंबा समय राजनीति में रहा है, कई बार आप सोलापुर जिले की मोहाले और मंगलवेड़ा के विधानसभा की सीटों से चुने गए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी शुभकामनाएं इस सम्मेलन के लिए विशेष हमारे साथ साझा करने के लिए।
आदरणीय गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत जी ने यहां आके शराब मुक्ति के बारे में, व्यसन मुक्ति के बारे में गोवा को लेके सारे भारत भर व्यसन मुक्ति के काम में मैं मदद करूंगा, ये काम उन्होंने अपने लिए बहुत आसान किया है। इस शराब मुक्ति के बारे में बात करते समय आज भाइयों और बहनों और माताओं सभी के सामने सभासदों को मैं नमन करता हूं और इस बात को दोहराने के पहले कौरव का युद्ध में, लड़ाई में पराभव हुआ उसी समय धर्म को छोड़ के उन्होंने बात करना शुरू की और औरतों पर अत्याचार करने की बात उन्होंने दोहराई, इसीलिए कौरवों को पराभूत होना पड़ा। इसी तरह ये सब बातों में आज राजनैतिकता में बहुत बदल हो गया है। इसीलिए मैं 40 बरस इस राजनैतिकता में बिताए, लेकिन वो दिन वो काम यशवंतराव चव्हाण साहब का कानून का रास्ता और आज का रास्ता, इसमें बहुत फर्क या अंतर मुझे लगता है। इसी कारण इस सब बातों में यदि अच्छा जीवन जीना है तो जीवन से शराब को निकालना है। शासन ने, सरकार ने, प्रशासन ने, सब अधिकारी वर्गों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सबने ये सारे बातों के सामने हार मान ली और उन्होंने शराब मुक्ति का यश पैदा नहीं कर पाए। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ही एक ही संस्था ऐसी है कि जिस संस्था ने 10 करोड़ लोगों को देश में व्यसन मुक्त करने का संकल्प किया और मां बहनों को विधवा होने से बचा लिया। ये सब बातों को बहुत बड़ा काम इस हिंदुस्तान में हो गया है। सारे हिंदुओं को या सारे समाज के लोगों को आधार दिया है और ये माता भगिनी को सारे लोगों को आधार देके व्यसन मुक्त महाराष्ट्र बनाने के लिए लोगों को अच्छी तरह से काम किया है। सपना बेन जी ने जब अपने सामने बात करते समय चिड़िया का उदाहरण दिया और बोल दिया कि इसका नाम कौन से यादी में रहेगा, इसी के लिए यानी आग बुझाने के यादी में रहने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। चिड़िया ने आग बुझाने के यादी में आने के वास्ते कोशिश की, प्रयत्न किया, प्रयास किया और उन्होंने अपना काम निभा लिया। उसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ही इस व्यसन मुक्ति के काम में चिड़िया से भी आगे जाके सभी का काम अपने लिए करते रहेगी, यही मुझे विश्वास है, मुझे समाधान है। और इस काम में आज सारे हिंदुस्तान में काम को लगाने की कोशिश, 140 देश में ये सारा काम यहाँ हो रहा है। और पिछले 40 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, लेकिन 40 सालों में मैंने बहुत धूप छांव देखे हैं, उसके उतार मैंने सोचे हैं, देखे हैं, लेकिन लगातार जनता की सेवा की है। 5 टर्म, 5 बार MLA रह चुका हूं, लेकिन इस सारी बातें में लंबे अनुभव के बाद आज मैं राजनीति को देखता हूं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि जो दिया वचन संभालने की बात अभी पीछे पड़ गई है और उसी बातें में कुर्सी के लिए सब कुछ, ऐसा बात सामने आ रही है। इसी समय राजनीति का मतलब जनता की सेवा ऐसा था, लेकिन आज इसका मतलब सिर्फ कुर्सी को पाना यह हो गया है। इसीलिए इस काम में जो दर्जा था, जो औकात थी या सम्मान था, वो सम्मान अभी कम होते जा रहा है। ये बात आपके सबके ध्यान में लाना मेरा काम है। आज गली से लेकर दिल्ली तक सत्ता का लालच दिखा रहा है। यहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के इस संस्था में, लेकिन बाहर काम करते हैं। राम मंदिर में इतना बड़ा घपला हो गया और वहां दान में कुछ खोट आ गई, दान में वहां कुछ काला आ गया, इसी कारण ये सारे बर्बादी इतनी आगे पहुंची है कि खुद यानी जो पैसा दान का पैसा संभालने वाले लोग हैं वही इसी तरह वहां काम करते हैं, पाप करते हैं। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के काम में लाखों लोग काम करते हैं और 100 बरस से संस्था चलते आई है, लेकिन इस संस्था में कोई खोट कोई पाप मन में आने की बात नहीं आ गई। यही बड़ी बड़ी आदर्श की और सबकी सोच के बारे में ये बात बहुत बड़ी है। उसी के बाद धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, समाज सेवा में अहंकार स्वार्थ और लोभ इतना बढ़ गया है कि उसी के सामने कुछ भी हमें दिखता नहीं है, ये बात अच्छा नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में सब काम करते हैं, सब संस्था चलाते हैं, लेकिन संस्था में हूं लेकिन मेरा निस्वार्थ काम है, स्वार्थ के बिना काम करना यही मेरा मकसद है, इसी तरीके से ये सारे काम में लगे हुए रहते हैं। इसीलिए इन लोगों के मन में कोई पाप आया है ऐसा बात नहीं हो गई, यही इस संस्था का आदर्शवाद है या आदर्श बात इसमें आपके सामने आ गई है। इसी के बाद मैं आखिर को इतना ही कहना चाहता हूं, समाज जीवन पर जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उस जब काम करते हैं, सभी लोग पॉलिटिक्स में रहते हैं, तो ये इसका असर दुनिया में सारे समाज पर इसका असर आता है। इसीलिए ये आदर्श आइडॉल बोल के इन लोगों को देखना होता है, इसीलिए इनका अच्छा बर्तन अपने अपने सामने रहना यही इसमें इनका काम है। लेकिन इसका असर अच्छा नहीं होने के कारण आज सारे गंदा बात पॉलिटिक्स में चली है ऐसा लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यह सारा स्वच्छ हो जाएगा। इसके ऊपर हम सोच के आगे चलना जरूर है। जो गिर गए सो गिर गए, जो मर गए सो मर गए, जो चलते रहे शाश्वत उसी की सफलता अविराम है। चलना हमारा काम है, जीवन इसी का नाम है। ये बात करते समय मैं इतना ही बात आपको समझाना चाहता हूं। मुझे ये सारी बातें देखने से एक 20 बरस के पहले यहां आया था, लेकिन बहुत थोड़े देर के लिए आया था, देखा नहीं। इसीलिए आज सारा देखने से मन को बहुत समाधान लगता है, बहुत खुशी लगती है कि इतना काम ये गए 20 बरस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ने खड़ा किया है और निस्वार्थ भावने से काम खड़ा कर दिया है। इसीलिए ये काम के लगान से ये सारे काम में अच्छा काम होता है, लेकिन जिसमें देश नापास हुआ, हिंदुस्तान ने काम किया लेकिन उसमें शराब मुक्ति के बारे में उन्हें ऐश नहीं आया, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ने 10 करोड़ लोगों का संकल्प करके शराब मुक्त हिंदुस्तान बनाने का सपना देखा है। यह सपना हमेशा के लिए अपने पीढ़ी के लिए अपने सारे खानदान के लिए सबने हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमार के ऋणी रहना, आभार मानना। इतना बड़ा काम इस शराब मुक्ति के बारे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने किया है, इसीलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और सभी स्टेट ने सभी राज्य ने आज यहां हर स्टेट का हर राज्य का
हर आदमी आके दुआ देता है और इसी तरह के काम को हमेशा मदद करने की बात करता है। ये बात बहुत बड़ी एहसानमंद है कि हम सबको इस शराब से मुक्त करने के बारे में अपने जो यश मिलाया है, ये यश ये बहुत बड़ा दुआ देने वाला है। इसीलिए मैं सबको इसका प्रणाम करता हूं और आप लोगों को दुआ देता हूं। मुझे खुशी हुई कि इस बातों में मुझे आने को, यहां बात करने को मौका मिला और विनायक राव पाटिल साहब ने मुझे यह लाया। मैं एहसानमंद हूं इन लोगों का कि इसी तरह की अच्छी संस्था मेरे को देखे गई। जब हम गांजा के वन में घूमते थे, उसी से यहां आके तुलसी के वन में घूमने का मौका हमारे सारे लोगों को मिल गया। हमें सबको इस माता के, बहन के, भाई के जड़े हुए कितने बड़े काम में ये लोग लगे हैं, इसी का मुझे अच्छा बर्ताव यहाँ इम्प्रेशन को मदद करने वाला था। इसीलिए मैं इनको इन सब का आभार मानता हूँ। हिंदी एक्सप्रेस करने में सराव न होने के नाते थोड़ी सी आपको समझाने में मेरी कमतरता थी, तो भी तुमने समझ लिया। इसीलिए मैं सारे भाई को, सारे बहनों को यहाँ आभार मानता हूँ और मेरा दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री लक्ष्मण राय ढोबले जी। आपके भाव आपके शब्दों से ऊंच हैं, इसलिए आपके भाव हमने बहुत अच्छी तरह से समझे और बहुत ही ऊंचे विचार आपने अपने संक्षिप्त में हमारे सामने रखे। आपकी संस्था के प्रति जो इतने ऊंच विचार हैं, उनको सुनकर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, जिसका बीज स्वयं परमपिता परमात्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से निराकार शिव परमात्मा ने राजयोग की उच्च विद्या दी और वो उच्च विद्या आज पूरे विश्व में फैलती चली जा रही है और जिसका लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। पूरे विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं जहां पर नारी का इतना सम्मान हो। पूरे विश्व में एक ब्रह्मा कुमारी ऐसी संस्था है जिसका संचालन नारी शक्ति करती है। एक और अनोखी बात है यहां पर आपको लाखों लोग, हजारों लोग तो यहां पर सेवा करते हुए दिखेंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में एक भी पेड एम्प्लॉय नहीं है। सब वॉलंटरी सेवा करते हैं और दिल से करते हैं। कई बार बहुत से बड़े बड़े एमएनसी कॉरपोरेट के लोग यहाँ आते हैं और वो हैरान होते हैं कि जो काम हम पैसे देकर नहीं करवा पाते, आप वॉलंटरीली कैसे करा लेते हैं। तो यही हम जहाँ आप बैठे हैं, माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, जहां पर आकर के सब लोग देख सकते हैं कि कैसे वॉलंटरीली मिलजुल कर अगर हम यहाँ पर माउंट आबू में हेडक्वार्टर में ऐसा बना सकते हैं तो हम पूरे भारत को भी ऐसा बना सकते हैं। ये तो एक परमात्मा का सैंपल है। तो जैसे मैं बता रही थी कि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है और उस वृक्ष की जो जड़ें, जो आदि रतन हैं, उन आदि रत्नों में से एक अमूल्य रतन आज हमारे बीच में है, हमारे आदरणीय करुणाबाई जी, जो आज के हमारे सत्र के अध्यक्ष हैं। आपने 1960 में इस ज्ञान को, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जब सरकार में थे तब आपको ज्ञान मिला और आपने अपना जीवन इस विश्व सेवा में दिया। आपने पहले दक्षिण भारत की बहुत सेवा करी, फिर उसके बाद आपने, आपका लेखन में इंटरेस्ट था, आपने प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा भी बहुत सेवाएं करी और 1971 में ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर में आए और एज ए पीआरओ यहां पर सेवा करी। मेरी आपसे, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ, शायद करुणाबाई जी को याद होगा कि नहीं, जब मैं माउंट आबू में पहली बार आई थी तो सबसे पहले जो मुझे सेवा मिली थी वो करुणाबाई जी ने दी थी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी उस समय। तो करुणाबाई जी की विशेषता कि आप ब्रह्मा कुमारी इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस समय नया नया कंप्यूटर आया था लेकिन कोई चलाने वाला नहीं था, तो जब मैं आई तो करुणाबाई जी ने मुझे बुलाया और बोला कि आप इसको चलाओ और यहाँ सबको सिखाओ। तो सबसे पहले मुझे सेवा हेडक्वार्टर में करुणाबाई जी ने ही दी थी। आप ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, चेयरपर्सन हैं मीडिया विंग के, आपने पीस ऑफ माइंड चैनल, रेडियो मधुबन जैसी कई चीजें, कितनी बातें मैं बताऊं, वीडियो डिपार्टमेंट आप जो देख रहे हैं, साउंड डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट्स आपके अंदर चलते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें।
सत्यम शिवम सुंदरम, मंच पर उपस्थित मेरे साथियों, आज यहां उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, हम ब्रह्मा कुमारी इस समय पर 90 साल के हम विशेष इसका महोत्सव बना रहे हैं। अनेक प्रकार की सेवाएं इस द्वारा हो रहा है, उसमें जैसे आपको बताया कि 10 करोड़ आत्माओं तक प्रतिज्ञा कराने की जो प्रयास जो करा रहे हैं, तो वो आप सबने सुना। अब मैं थोड़ा सा, जहां आप आए हैं, आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप आए हैं, परंतु यह क्या आप संस्था क्या क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप जाकर के दूसरों को भी बता सके। इसीलिए पहली बात तो 90 साल हम लोग इस समय पर इसका महोत्सव मना रहे हैं, दूसरा लगभग 50,000 डेडिकेटेड बहने हैं और लाखों करोड़ों जो विद्यार्थी कहते हैं हम लोग, यहाँ फॉलोअर्स नहीं कहते हैं, विद्यार्थी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। संस्था में आध्यात्मिक शक्ति क्या है, दो चीजों से है। एक है सुबह 4 बजे उठ करके 1 घंटा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है, अपने लिए और विश्व के लिए तपस्या करते हैं। ये हर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये एक नियम है जो ये फॉलो करते हैं। दूसरा, सत्संग कोई 10 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन के लिए आते हैं, करते हैं, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारी बहनें रोज 1 घंटा, जैसे यहां हम 7 से 8 बजे तक करते हैं सुबह, तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये नियम है। 365 डेज ये कार्य चलता है सत्संग का। और दूसरा, जैसे बताया गया ईश्वर के बारे में, क्योंकि मेडिटेशन सिखाते हैं परमात्मा को याद करने का, तो प्रश्न आता है परमात्मा कौन है। एक ईश्वर है, एक विश्व है, एक वर्ल्ड फैमिली है, वसुदेव कुटुंबकम। ये विश्वास से ये संस्था सेवा कर रहे हैं। दूसरा, कभी इस संस्था में जो भी आते हैं उनसे कभी ये नहीं पूछा है आप कौन से जात के हैं, कुल के हैं, भाषा आपकी, कभी नहीं पूछते हैं। हम सचमुच, मैं खुद भी इस संस्था में लगभग 65 इयर्स से हूं, परंतु मैं कभी किसी से पूछा नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं। शायद यही एक संस्था है जो सबको एक समान अपने साथ जुड़ करके ईश्वरीय सेवा इस विश्व में कर रहे हैं। यही ये संस्था यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना अनेक सेवाएं कर रहे हैं। हमारे दादियां प्रकाशमणि दादी जी, जानकी दादी जी, वहां इन्होंने भाषण भी किए थे और इनको अनेक पीस अवार्ड भी वहां से मिले थे। और आपको ये भी बताऊं कि भाई लक्ष्य क्या है। ये जो राजयोग सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, तो इनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य दो है, एक तो भारत को विश्व गुरु बनाना। तो भारत में आज लाखों सच्चे गीता पाठशालाएं हैं और हजारों सेंटर्स है, आश्रम है, तो जिससे आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा लक्ष्य है, हमारे भारत में गोल्डन एज था, स्वर्णिम युग था, तो उसको फिर से वापस इस धरती पर लाने का, हमारे भारत में लाने का पूरा प्रयास ये करते हैं। लगभग आज विश्व में 140 देशों में ये कार्यक्रम चला रहे हैं और वहां भी शिक्षाएं दे रहे हैं। भले वो किसी भी कल्चर का होगा, जाति के होंगे, परंतु सारे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम के बारे में आज 140 देशों में ये सेवा करते हैं। इस संस्था का इस समय पर 2 टीवी चैनल है, सैटेलाइट चैनल अवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड, 2 चैनल है जो हर एक अपने घर में देखते हैं। उसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है और ये 24 घंटे का चैनल है, घर घर में लाखों लोग देखते हैं। और यहां एक विशेषता ये है, ये किसी जाति के या उस वर्ग के नहीं है, तो यहां सभी लोग एक सेवा करने का विधि है, जैसे पॉलिटिशियंस को आज कर रहे हैं, इस प्रकार 25 प्रोफेशनल्स है अलग अलग, जैसे मीडिया है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, तो जुडिशरी जिसको कहते हैं, इस प्रकार 25 प्रोफेशनल्स को यहां जैसे आपकी सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार सेवा करते हैं। और अंतिम मैं यही करूंगा, कई बार पूछते हैं आप कौन है, हिंदू है या क्या है,
तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम सभी यही कहते हैं, हम सनातन हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं, ये हमारा धर्म है। तो मैं इतना ही आपको कहते हुए मेरा शब्द मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करुणा भाई जी का, आपने समय निकाल कर आए और बहुत प्यार से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैंने फोन किया कि आपको आना है तो बोला जी, तो बड़े जी कहकर जी कहना सिखलाते हैं, तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बस सत्र के अंत पर हैं और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ, ब्रह्मा कुमार रंगनाथ भाई जी जो मैसूर से आए हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पॉलिटिशियन सर्विस विंग के, आप पिछले 36 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, आप फॉर्मर मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, आप प्रिंसिपल हैं वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग इन मैसूरू सब जोन, आपने कई किताबें जो हैं इंग्लिश से कन्नड़ में ट्रांसलेट की हैं, और सबसे बड़ी बात कि कई लोग सोचते हैं कि शायद ब्रह्मा कुमारी में केवल कुमार कुमारियां ही होते हैं, फैमिली वाले नहीं होते हैं, लेकिन आप हमारे सामने एग्जाम्पल है कि आप फैमिली में हैं और फैमिली सहित सरेंडर हैं। तो ये इनकी विशेषता है कि मैसूर में इनका परिवार जो है इस सेवा में लगा हुआ है, तो ये हमारे सामने बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं निवेदन करूंगी कि धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए रंगनाथ भाई जी से।
ओम शांति। आज इस राजनीतिज्ञों का ऑल इंडिया सम्मेलन, इसका उद्घाटन समारोह बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। इस संदर्भ में जो भी वक्ता मंच पर बोले हैं उनका एक एक लाइन मैं याद करके उनको थैंक्स देता हूँ। पहले एम ऑफ द कॉन्फ्रेंस दीदी आशा जी, संक्षिप्त रूप से उन्होंने ऐसा बोला कि राजनीतिज्ञों को निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी से सेवा करनी है। राजनीति में पहला स्वच्छता और ऑनेस्टी रहनी चाहिए, सम्मोहन अच्छा रहना चाहिए, और उसके साथ इन्होंने पांच आध्यात्मिकता का प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए जो सीएम साहब ने उसका रिपीटेशन किया, और चिड़िया का उदाहरण भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी के लिए। और श्रीमती अनसुया जी जो मिनिस्टर ऑफ आरडीपीआर एंड पंचायत राज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इतना दूर से बहन जी आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोट्स दिए हैं, मैं रिपीट करता हूँ। जर्नी फ्रॉम गन टू पेन, गुड लीडर हैज टू बी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग। स्पिरिचुअलिटी इज नेसेसरी फॉर ऑल पॉलिटिशियंस। Peace starts in the minds of politicians and not in legislative assembly discussions. बहुत अच्छा बोली बहन जी ने, बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा शुभ प्रेरणा ये ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी जी ने, उन्होंने बोला राजनीति में आध्यात्मिकता आवश्यक क्यों है, आध्यात्मिकता क्या है, इसके बारे में दीदी ने बोली है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। और राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा जी ने आध्यात्मिकता क्यों चाहिए और आध्यात्मिकता का अभ्यास क्या करें मेडिटेशन के द्वारा, इसके ऊपर प्रैक्टिकल में बताई। और उन्होंने बोला आध्यात्मिकता में कर्मेंद्रियों का जीत बनना है, यही मुख्य उद्देश्य है। और स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट जो वर्ल्ड आता है इसमें कनेक्टेड है, स्पिरिट माना आत्मा है, आत्मा में सात मौल्य रहते हैं, उसका अभ्यास करते हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और मन में शांति भी आ सकता है, ऐसा उषा दीदी ने बोली, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है।
और डॉक्टर प्रमोद सावंत जी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बहुत बहुत इंस्पिरेशनल टॉक किया उन्होंने, उनका थोड़ा बात रिपीट करता हूँ। राजनीति में भी लोग लाभ देख करके आते हैं और प्रैक्टिकल बातें इन्होंने किया कि पावर टू टेक डिसीशंस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर पॉलिटिशियंस, इसलिए उनको आध्यात्मिकता चाहिए। वसुधैव कुटुंबका प्रज्ञा जो आता है, जिसे स्पिरिचुअलिटी उन्हें अपनाया है, उनको आता है वसुधैव कुटुंबका प्रज्ञा। और सभी को, हम सभी को पहला हमारा देश इम्पोर्टेंस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट है सेवा का संकल्प रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पॉलिटिशियंस। और यहाँ जो उन्होंने देखा उसके बारे में एक बात किया उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटर्स लीड्स टू गुड डेवलपमेंट, ये बात उन्होंने किया। व्यसन मुक्त भारत के भी उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसको अभिवादन किया। बहुत बहुत धन्यवाद चीफ मिनिस्टर साहब को। और विक्रम कुंवर जो पूर्व मंत्री जी बिहार से आए हैं, उन्होंने बताया कि राजनीति पहले जैसे होता था ऐसा अभी नहीं है। राजनीतिज्ञों को इच्छा शक्ति बहुत रहना चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला। विक्रम कुंवर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी लक्ष्मी जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है इस विंग का, उन्होंने बोला कि शांति के लिए क्या क्या चाहिए। शांति के लिए निस्वार्थता चाहिए, शांति के लिए अच्छा चारित्र चाहिए, शांति के लिए पक्षातीत जीवन चाहिए और शांति के लिए आध्यात्मिकता चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला। ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मण राव डोबले जी पूर्व मंत्री ऊपर महाराष्ट्र, उन्होंने एक उदाहरण दिया, कौरव लोग ने धर्म छोड़ करके राजकारण किया इसलिए उनका पराभव हो गया। राजनीति में बहुत बदलाव हो गया है, अभी शासन से व्यसन मुक्त भारत का होना चाहिए, इसमें ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत बहुत योगदान बहुत अच्छा है। और अभी सब कुछ कुर्सी का हो रहा है, किस्सा कुर्सी का हो रहा है, इसका उन्होंने बहुत अपना अनुभव बताया। और लक्ष्मण राव डोबले को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा आदरणीय करुणा जी सेक्रेटरी जनरल, हमारा संस्था कैसे चलता है, इसका बेस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका परिचय क्या है, उन्होंने संपूर्ण रीति से उन्होंने बताया। करुणा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और लास्ट में सपना दीदी ने बहुत बहुत मंच अच्छी रीति संभाल करके टाइम पर सब कुछ समाप्त किए हैं, उनको भी आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र में आप सभी यहाँ मौजूद होकर के सब कुछ अच्छे आपने अप्रिशिएट किया है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति।
ओम शांति। रंगनाथ भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर आपने सबके पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करके हमारे लिए एक टेक अवे तैयार करके दिया। थैंक यू रंगनाथ भाई। और अब मैं निवेदन करूंगी बहनों से कि वो मंच आसीन हमारे अतिथियों का दीदी के द्वारा, आशा दीदी और करुणा बाई जी के द्वारा बाबा का चित्र और सौगात जो है टोली द्वारा सम्मानित करने के लिए, और सभी एक मिनट के लिए बैठेंगे। आगे का थोड़ा प्रोग्राम चेंज है, वो सुनकर जाएंगे। अभी आप भोजन पर जाएंगे और पूरे 4:30 बजे इस हॉल में वापस आएंगे। 4:30 बजे एक बहुत सुंदर सेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट पर हमारे कॉरपोरेट स्पीकर हैं, कॉरपोरेट में जो बहुत अच्छी जो है प्रवक्ता हैं ईवी गरीश भाई, वो जो है आपको बहुत सुंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आपके साथ एक अपना टॉक देंगे। और उसके बाद 5:30 बजे जो है ये चेंज है, 5:30 बजे पैनल डिस्कशन है ना, उसका टॉपिक है राजनीति एक सामाजिक उत्तरदायित्व। और उसके बाद 7:30 बजे आप भोजन के लिए जाएंगे और 8:00 बजे आपके लिए एक बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है, तो वो भी आप अटेंड करेंगे, 8 बजे कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। ये नोट कर लेंगे, थोड़ा चेंज है, पहले 6 बजे था, अब 8 बजे कल्चरल प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो अभी जो है हम सभी 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और मैं पुनः सभी माननीय अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ। 2 मिनट बैठकर फिर जाएंगे।